الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ کلاس جہاں پہ ہماری کنکلوڈ ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ ایک خاص لیول پہ آ گئے، فری میسنز، الیومناٹی، جوڈائزم، زائنزم یا بلڈربرگ، یہ ایک خاص لیول پہ آگے پاور کی، اور اس کے بعد 9/11 کا انہوں نے ایونٹ بھی کروا دیا، جس کے نتیجے میں وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا جو وہ چاہ رہے تھے۔ وہی کچھ ہو گیا، انہوں نے وہی نتیجے حاصل کرنے شروع کر دیے جو انہوں نے چاہا تھا۔ تو اس لیول کو اچیو کرنے کے بعد اب نیو ورلڈ آرڈر کی طرف پیش رفت جاری ہوئی۔ یہ ورڈز بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں، گلوبل گورننس، گلوبلائزیشن، نیو ورلڈ آرڈر ہو گیا، ورلڈ از اے گلوبل ولیج، یہ تمام ٹرمز جو ہیں بیسکلی یہ وہ ایک ہی کانسیپٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس کی طرف یہ مائنڈ لوگوں کا میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، دنیا میں لڑائی چلتی رہے گی جب تک کہ دنیا کے اندر ون گورنمنٹ نہیں آ جائے گی، ایک ہی سسٹم ہو جو پوری دنیا کو رول کرے۔ کولڈ وار اتنے سال چلتے رہی تھی، وہ دو کلیش آف آئیڈیالوجیز کی جنگ تھی کہ ایک طرف کیپٹلزم تھا، ایک طرف کمیونزم تھا۔ تو اس طرح نئے آئیڈیاز آتے رہیں گے، جب تک ایک ہی آئیڈیا پوری دنیا کو کانکر نہیں کر لے گا تب تک امن نہیں ہونے والا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ کر کے فیڈ ان ہوتی جا رہی ہیں، تھرو میڈیا۔ ہمارے پلانز جو ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کے جو پلانز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جلد بازی کے ہوتے ہیں کہ یہ میرے مطابق چیز نہیں ہو رہی یا ہمارے مطابق چیز نہیں ہو رہی تو بس خودکش حملوں کی طرف آ جائیں گے یا ایک دم سے لڑائی جھگڑے کے اوپر آ جائیں گے۔ ان کے پلانز جو ہوتے ہیں یہ سینکڑوں سالوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے پلانز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا، اب میں چاہتا ہوں امیجیٹلی رزلٹ نظر آئے اس کا۔ ان کے پلانز یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے سوچا، ہم تو نہیں جئیں گے جب یہ چیز ہوگی، آئندہ آنے والی جو نسلیں ہوں گی نا ہماری، وہ اس کا بینیفٹ اٹھائیں گے۔ تو نیو ورلڈ گورنمنٹ اور ان تمام چیزوں کے اوپر اگین گریڈ آفٹر گریڈ آہستہ آہستہ کر کے اس کی طرف تدریجن بڑھ رہے ہیں، لیکن گرپ اتنی اسٹرانگ ہے کہ پوری دنیا ان کا پولیٹیکل سسٹم فالو کرتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر سیکولرزم ہے، پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی ہے۔ کہیں اگر ڈیموکریسی نہیں ہے تو وہ خود ابھی ان کی مسلحت یہ ہے کہ ڈیموکریسی نہ ہو، جب وہاں پہ مسلحت ختم ہو جائے گی ان کی تب ادھر بھی ڈیموکریسی آ جائے گی۔ میں نے لاسٹ کلاس کے اندر بتایا تھا کہ جب انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے ڈیموکریسی کو تو خود ہی ختم بھی کر دیتے ہیں، جس طرح ایجپٹ کے اندر ابھی کیا کیا ہے، اخوان المسلمین کی حکومت آئی تھی، ایک سول گورنمنٹ آئی تھی 30 سال کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد، لیکن وہ اسلامک گورنمنٹ تھی، ان کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اس لیے آرام سے انہوں نے اوور تھرو کروا دیا اس گورنمنٹ کو، جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کس کرائم کے پیچھے؟ کوئی کرائم ہے ہی نہیں اس کا جس کے پیچھے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے مرسی کو۔ تو پوری دنیا اس کو کر رہی ہے، یا اگر کوئی دنیا میں ملک رہ گیا ہے تو وہ اس طرف تدریجن جا رہے ہیں، جیسا سعودی عرب وغیرہ کنٹریز ہو گئے، وہاں پر بھی اب وہ کاؤنسل لیول کے انتخابات، الیکشنز ہو رہے ہیں، ادھر بھی آہستہ آہستہ کر کے وہ پارٹیز کی چیز چل رہی ہے۔ وداؤٹ اینی ایکسیپشن پوری دنیا کے اندر پیپر کرنسی ہے، کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں، سعودی عرب کیوں نہ ہو، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ بلکہ ایک لیکچر تھا ڈاکٹر اسرار احمد کا، پرانا لیکچر، امریکہ کے اندر تھا، تو انہوں نے ایک اور اسکالر گزرے ہوئے ہمارے جن کو 2003 کے اندر ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ، ان کی لائف کی ایک اسٹوری بتائیے۔ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ جو ہیں یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور وہاں پڑھاتے رہے ہیں، عربک لینگویج اور اسلامک اسٹڈی جو تھے وہاں پہ کافی سال پڑھاتے رہے، بعد میں پاکستان آ گئے تھے اور پھر یہاں پہ انہوں نے دعوت تبلیغ کرتے رہے تھے، تفسیر بھی لکھی انہوں نے اور ان کے ٹی وی پہ پروگرامز بھی آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی زندگی کا واقعہ بتا رہے تھے کہ مجھے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ نے بتایا کہ ایک دفعہ مدینہ یونیورسٹی میں جب میں پڑھا رہا تھا، اب کہاں کی بات کریں، مدینہ کی بات کریں، وہ پاک شہر مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے اسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ادھر ہے، ریاض الجنہ ادھر ہے، کہاں پہ ہیں وہ، مدینہ یونیورسٹی میں ہے جہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، پوری دنیا سے لڑکے، نوجوان، ینگسٹرز آتے ہیں اور دین پڑھتے ہیں، اسلام پڑھتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اسپریڈ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ پڑھا رہے تھے، تو وہ ایک خاص ان کا جب لیول آف ایکسپیرینس ہو گیا، اتنے سال گزر گئے، تو ان کو بتایا گیا کہ اب آپ کو اگلے مہینے سے فلانا الاؤنس بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلو مجھے الاؤنس ملے گا، اچھی بات ہے۔ نیکسٹ منتھ کی جب میں سیلری لینے گیا تو مجھے صرف سیلری ملی ہے، وہ الاؤنس نہیں ملا، میں چپ رہا، چلو کوئی بات نہیں۔ اگلا مہینہ گزر گیا، اس طرح ہوا، پھر تیسرے مہینے کے اوپر میں نے اکاؤنٹنٹ سے پتہ کروایا جا کے کہ مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ مجھے الاؤنس ملا کرے گا، لیکن ابھی تھرڈ منتھ جا رہا ہے، الاؤنس ملا نہیں ہے مجھے۔ تو اس نے جواب کیا دیا تھا، असल में मैनेजमेंट जो है मदीना यूनिवर्सिटी की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है अमेरिकन बैंक्स के अंदर। वहाँ से जो इंटरेस्ट का पैसा आता है उसके थ्रू वो अलाउंस मिलेगा। वो भी पैसा आया नहीं है, इसलिए अलाउंस नहीं दे सक रहे हम लोग। जो मदीना यूनिवर्सिटी ही के अंदर जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं ना, वो मस्जिद नबवी के अंदर इमाम होते हैं। और इस तरह ही उम्मुल कुरा जो है, वहाँ के जो बड़े बड़े प्रोफेसर और पीएचडीज वगैरह हैं, वो इमाम काबा होते हैं। कारी शुरैम, कारी सुदैस, ये सब वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं। तो उनका जब ये हाल है, जो इमाम काबा हैं या मस्जिद नबवी के इमाम हैं, जब उनका ये हाल है, तो फिर आम आदमी कहाँ बचा होगा। ये उस हदीस की फुलफिलमेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुत्तकी से मुत्तकी शख्स भी होगा, वो सूद की गुबार से नहीं बच सकेगा। मुत्तकी से मुत्तकी शख्स भी होगा, वो उससे बच नहीं सकेगा। तो पूरी दुनिया इस पेपर करेंसी और इसी जाल के अंदर है। और थर्ड लेवल के ऊपर जो सोशल सिस्टम था, उसके अंदर कुछ कमी है, लेकिन वो मीडिया और फिल्में इनके थ्रू बहुत तेज़ी से उस तरफ पेशरफ्त हो रही है। वो पुराने लेक्चर्स के अंदर मैं एनालिसिस करके बता चुका हूँ उन चीज़ों का। तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर ये जो एक अटैक चल रहा है, और अटैक हैवी मीडिया के थ्रू सैटेलाइट पूरी दुनिया में आती है, इंटरनेट के ऊपर कोई फिल्ट्रेशन नहीं होती। मूवी हॉलीवुड की रिलीज़ हो रही होगी, उसी रात को यहाँ पे भी देखा जा रहा होगा। मैच कहीं क्रिकेट का आ रहा है, कहीं दुनिया के किसी कोने के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट आ रही होगी। और आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ के अंदर ये अपना गन डालते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे क्रिकेट मैच का डांसिंग से क्या ताल्लुक़ है? जो चीयर लीडर्स लड़कियाँ जो होती हैं, वो शॉट लगती है, कोई आउट हुआ, कुछ हुआ, और उसका क्या ताल्लुक है? हर चीज़ के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें ऐडअप होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ऐडअप करते जा रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो बात है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी के अंदर किताबुल फितन में। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक ऊँची इमारत के ऊपर खड़े होकर सब लोगों से ख़िताब कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम लोग वो देख रहे हो जो मुझे दिखाई दे रहा है? तो सहाबा ने कहा कि नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के ऊपर फितने और आजमाइशें इस तरह गिरते हुए देख रहा हूँ जिस तरह बारिश के कतरे गिरते हैं। बारिश जब होती है कहीं पर भी, तो बारिश को सिलेक्टिव तो नहीं हो रही होती कि इस स्टाइल पे नहीं होगी, उधर होगी। जब बारिश होती है तो वो इवन होगी, हर तरफ कोई जगह छोड़ती नहीं है बारिश। चाहे एक माली आपने रखा है, उसको कहा गया है कि तमाम गार्डन, तमाम गमलों के अंदर आपने पानी देना, कुछ करना है, लेकिन जब बारिश होती है तो उसके बाद जो ख़ास स्मेल आती है मिट्टी की, वो माली के पानी देने से नहीं आ रही होती। इवन होती है, सफिशेंट होती है बारिश, कोई जगह छोड़ती नहीं है, कंजेक्टिव होगी। यही आप सल्लम ने तस्वीर दी थी कि फितने इस तरह तुम्हारे ऊपर मैं गिरते हुए देख रहा हूँ जिस तरह बारिश के कतरे गिरते हुए देख रहा होता हूँ। तो ये बिल्कुल वही मामला है जो हम आजकल देख रहे हैं। फ़ोन सेट बाहर रिलीज़ हो रहा होगा, हम लोग यहाँ पे उसको खरीद रहे होते हैं। पाकिस्तान में रिलीज़ भी नहीं हुआ आईफोन, ये सैमसंग और ये जो है, ये ऑफिशियली उस तरह रिलीज़ भी नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम सब यहाँ पे ले रहे होते हैं, हर बंदा यूज़ कर रहा है। मैंने आपको लास्ट फ्राइडे वाली क्लास के अंदर बताया था कि NSA जो है वो आराम से कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉल लिस्ट, SMS लॉग, तमाम चीज़ें, ब्राउजिंग हिस्ट्री, सब कुछ जो है वो फ़ोन से पुल आउट कर सकती है। ये नाम पुराने फ़ोन में पॉसिबल नहीं था, स्मार्टफोन के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट चलेगा, सब कुछ होगा, तो इसके अंदर पॉसिबल है। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया जाए, पूरी दुनिया के अंदर धुन मच जाए स्मार्टफोन्स की। अब इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, आपने अगर ये खबर अभी पिछले दिनों सुनी है कि नहीं सुनी, इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है उसके फ़ोन के ऊपर टैपिंग हुई भी थी। टैपिंग ये नहीं कि कोई नेटवर्क के थ्रू की गया, उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर मोडली ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया जिसके थ्रू वो सारा का सारा डाटा मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, किया जा रहा है। इसी तरह जर्मन जो चांसलर जो हैं, उसके फ़ोन की रिपोर्ट आई थी कि उसके फ़ोन को टैप किया हुआ था। तो इस तरह तमाम लोगों के फ़ोन और नीतियों को टैप किया हुआ। हमारे आप आर्मी के ऑफिसर्स देख लें, ISI के अंदर कोई है, इंटेलिजेंस के अंदर है, वो सब लोग स्मार्टफोन की तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी जिस किसी से भी बातें हो रही होंगी, जो कुछ भी हो रहा होगा, ऐसे में इन चीज़ों के थ्रू वो तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन फैच हो रही है। तो फितना जो है वो बारिश के कतरों की मानद है कि तमाम दुनिया पे वो इवनली गिर रहा है, कोई बच नहीं सकता उससे। ये बात एक दफ़ा मैंने कहीं पहले भी की थी किसी और क्लास के अंदर। अगर आपने अपना ईमान बढ़ाना हो ना, तो उसका एक तरीका क्या है कि अगर वाकई आपको कन्विक्शन चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई को अल्लाह के सच्चे रसूल थे, ये वाकई सच्चा दीन है, तो उसका एक जो है तरीका वो ये है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर के बारे में हदीसों में बातें की हुई है ना, उनको पढ़ के आजकल के ऊपर एनालाइज करके देख लें कि कोई सच्चा बंदा ही ऐसी बात कर सकता था जो तब कही थी और अब वो पूरी हो रही है। जिस तरह वो हदीस जो है रसूल सल्लम की, एक वक्त ऐसा आएगा कि अरब के नंगे पैर नंगे बदन बकरियां चराने वाले लोग वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। एक तरफ बताया जा रहा है कि नंगे पैर नंगे बदन बकरियां चराने वाले, उनका कोई काम है ही नहीं, वो क्या करेंगे कि वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। पता नहीं इस हदीस का क्या मतलब होगा, साहबा ने क्या समझा होगा कि ऊंची इमारतें क्यों बना रहे होंगे वो, ऐसी क्या बात होगी। लेकिन ये हार्डली, अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें 40-50 ईयर्स पुरानी गूगल पे तस्वीरें देखे देखें, आपको शारजा और ये दुबई और ये तमाम चीज़ें आपको इस तरह लगेगा जिस तरह पता नहीं कौन सा कोई पुराना कोई शहर है पाकिस्तान का, छोटा सा शहर है, गरीब सा इलाका, गलियों में बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे, गाड़ियाँ हैं नहीं उनके पास, ना कुछ प्रॉपर सड़कें होंगी। अब आप देखें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बिल्डिंग्स वहाँ पर बनी हुई है, समंदर के अंदर 7-स्टार होटल दुनिया में सिर्फ एक है दुबई के अंदर है, और वो कहाँ बनाया था, वो समंदर में बनाया है, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, उसके अंदर उसके ऊपर उन्होंने उसको बनाया। दुबई इतना गर्म मुल्क है, इतना गर्म शहर है, उसके अंदर उन्होंने प्लाजा के अंदर सेकंड फ्लोर के अंदर दुबई शॉपिंग मॉल के सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर मरीन लाइफ है, वेल मछलियाँ शार्क्स वगैरह उधर रखी हुई उन्होंने, और स्कीइंग रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं प्लाजों के अंदर उन्होंने। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लम की सच्चे होने की गवाही है सारी। तो फितना जो है वो पूरी दुनिया को कवर करेगा। बेबसी का ये आलम है जो सिस्टम, जिस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि बेबसी का ये आलम है कि जिसको हम समझते हैं कि जो बात US प्रेसिडेंट कह देगा ना वो शायद मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड होगा, उसके पास मोस्ट अथॉरिटी होगी, गालिबन यही होगा। लेकिन ये आप देखें कि अगर किसी US प्रेसिडेंट ने इनके किसी सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की थी तो हुआ क्या था। अमेरिका का प्रेसिडेंट था एंड्रयू जैक्सन, 19th century के अंदर प्रेसिडेंट था अमेरिका का। इसकी दो स्टेटमेंट्स, आई बिलीव दैट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर मोर डेंजरस देन स्टैंडिंग आर्मीज, ये मैं कोर्ट बीच में से हटा के कह रहा हूँ। अभी हालांकि इस दौर के अंदर क्या बैंक्स होते होंगे, इस तरह आजकल के तो मॉडर्न बैंक्स नहीं थे, लेकिन उसने क्या कहा था कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स जो डेवलप हो रहे हैं ये तो ज़्यादा डेंजरस हैं एक आर्मी के मुकाबले में। एक आर्मी अटैक करे वो उससे लड़ना आसान है, बैंक्स के मुकाबले में लड़ना मुश्किल है। इसकी अपनी स्टेटमेंट है, द बैंक इज़ ट्राइंग टू किल मी, July 4, 1932 की है। 30th January 1935 को क्या हुआ था, एंड्रयू जैक्सन के ऊपर एक अनसक्सेसफुल असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी इसको किल करने की। US प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, जिसकी तस्वीर $5 नोट के ऊपर होती है, मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट अमेरिका का रहा है। इसकी बहुत लंबी कोटेशन, उसके मैंने सिर्फ हिस्से निकाले हुए हैं। द मनी पावर्स प्रे अपॉन द नेशन, आई सी इन द नियर फ्यूचर अ क्राइसिस अप्रोचिंग दैट अननर्व्स मी एंड कॉजेज मी टू ट्रेम्बल फॉर द सेफ्टी ऑफ माई कंट्री। कॉरपोरेशंस हैव बीन एनथ्रोन्ड अनटिल द वेल्थ इज एग्रीगेटेड, जमा हो जाएगी इन टू अ फ्यू हैंड्स एंड द रिपब्लिक इज डिस्ट्रॉयड। इसकी स्टेटमेंट थी November 21, 1864 की। इसने कोशिश की थी कि बैंक्स जो हैं उनका रास्ता रोका जाए और अमेरिकन गवर्नमेंट के इख्तियार में रहे मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इसके साथ क्या हुआ था कि 14th अप्रैल 1865 को इसको असैसिनेट कर दिया गया था। US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इसने क्या किया था, June 4, 1963 को इसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, ऑर्डर नंबर 11110, जिसके अंदर उसने ये कहा था कि जो फेडरल रिज़र्व था जो 1930 में बना था अमेरिका का सेंट्रल बैंक, उससे पावर्स वापस ली जाएं और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ये पावर हो कि वो करेंसी को रेगुलेट करेगी और छापेगी। वो मैंने पिछली एक क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसके साथ भी क्या हुआ था, November 22, 1963 को इसको असैसिनेट कर दिया गया था, और इसकी तो खैर वीडियो भी आपको यूट्यूब या आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। गाड़ी के ऊपर कॉन्वॉय जा रहा है और उसके सीधा हेड के ऊपर शॉट हुआ था। फिर इसके अलावा सऊदी अरब का किंग फैसल, एक वाहिद ही कोई बंदा होगा पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जो सीधे रास्ते पे था। 1973 की अरब और इसराइल की वॉर हुई थी तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, किंग फैसल ने ऑयल देना बंद कर दिया अमेरिका को। इसने अपना एक हथियार इस्तेमाल किया, ये वेपन ही है ना, और क्या है, ऑयल नहीं होगा तो ना तो रॉकेट चल सकते हैं, क्योंकि रॉकेट के अंदर ही मिसाइल्स के अंदर क्या लगेगा, फ्यूल ही डलेगा, एयर जेट्स के अंदर सब के अंदर शिप्स के अंदर यही चलेगा, और वो ऑयल कहाँ से निकल रहा है। نمبر ون آئل پروڈیوسنگ کنٹری سعودی عرب ہے, تو اس نے اس آئل کارڈ کو یوز کیا تھا اور امریکہ کو سپلائی بند کر دی تھی. اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, 25 مارچ 1975 کو اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. تو جتنی بھی اٹیمپٹس کی گئی ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کو روکنے کے لیے یا چیلنج کرنے کے لیے وہ فیل ہوئی ہیں. یہ میں صرف باتوں کی آپ لوگوں کو سمری بتاتا جا رہا ہوں. تو ڈی پاپولیشن کی جو پالیسی تھی کہ دنیا کی آبادی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے وہ جاری ہے. جیسے پولیو کے قطرے جو ہیں, مثال کے طور پہ پولیو کے قطرے کے بارے میں ایک افواہ یہ ہے, اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ میل اور فیمیل دونوں کے اندر پروڈکشن پاور کو ریڈیوس کرتا ہے. اسمال پاکس کے تھرو انہوں نے کیا پھیلایا تھا, ایڈس کا وائرس پھیلایا تھا. اس کو تو بندہ مار دینے والی بات ہے. ایڈس کا وائرس کیا کر دے گا, آپ کے تمام وائٹ بلڈ سیلس کو, آپ کے پوری باڈی کا ڈیفینس میکانزم جو ہے اس کو زیرو کر دیتا ہے. اب اس کے بعد آپ کا فلو اگر ہوتا ہے یا آپ کا ایون پیٹ بھی خراب ہوتا ہے تو آپ اس بیماری سے نکل نہیں سکتے. ابھی کیا ہوتا ہے, اگر بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کی, اگر آپ نہیں بھی کھاتے اینٹی بایوٹکس, آپ کی باڈی اس سے فائٹ کر کر کے اس کو دو چار دنوں میں ڈیفیٹ کر دے گی اسے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ میزلز ہو جائے یا ایک دفعہ اس کو چکن پاکس ہو گئے یا اس طرح کی جتنی بھی وائرل بیماریاں, ان کو ایک دفعہ اگر ہو گئی تو دوبارہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کی باڈی نے اسے مار کھائی تھی نا, تو اس کے بعد نیکسٹ ٹائم کے لیے باڈی پاورفل ہو چکی ہوتی ہے, اس پوزیشن میں آ چکی ہوتی ہے کہ اگر نیکسٹ ٹائم یہ وائرس آیا تو یہ نہیں کر سکے گا, پھیل نہیں سکے گا, اس کو پہلے کل کر دیا جائے گا. یہ ہماری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے میکینزم ڈالا ہے. ایڈس کا وائرس بس اس کو ختم کر دے گا, اس کے بعد چاہے آپ کا ایون پیٹ تک بھی خراب ہوا تھا نا, وہ آپ ریکور نہیں کر سکیں گے. اس سے انسان سلو ڈیتھ, مرتا جائے گا. اگر آپ کی تصویریں دیکھیں تو پیشنٹ بالکل کمزور پڑے ہوتے ہیں ہسپتالوں کے اندر, بس ڈرپیں لگی ہوں گی اور جتنا ٹائم لگ سکے گا اس کا. تو پولیو کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ کوئی بیماری تو نہیں اس کے تھرو پھیلا رہے, لیکن اس کے تھرو ایٹ لیسٹ جو سننے میں ہے بات وہ یہ ہے کہ اس کے تھرو میل اور فیمیل کی جو, کیونکہ بچوں کو پلائی جاتی ہے 5 سال سے پہلے کم عمر کے بچوں تک, ابھی تو ان کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ بھی نہیں ہوں گی, تو ڈیولپ ہوں گی کوئی 10 سال بعد جا کے کہیں جا کے, وہ آرگنس ابھی ڈیولپ بھی نہیں ہوتے وہ آرگنس. تو اس کو ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی اس کو دبا دیا جائے, ان آرگنس کی کیپیسٹی کو ختم کر دیا جائے, دبا دیا جائے. یہ مذاق اور ان چیزوں سے ہٹ کے آپ اگر اپنے کبھی گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں دیکھیں یا اس جنریشن کو فائنڈ آؤٹ کریں نا, ان جنریشن کے اندر کیا ہوتا ہوگا, ایوریج ہوتا ہوگا, آپ 6-7 بہن بھائی تھے, یہ اتنے بہن بھائی تھے. اپنے پیرنٹس کے لیول پہ آ کے دیکھیں, وہ لیول آ کے کم ہو گیا ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس کتنے بہن بھائی تھے, وہ تھے 3-4 تھے, 5 تھے. پھر اپنے لیول کے اوپر آ کے دیکھیں, اپنے کزنز اپنے لیول کے اوپر آ کے دیکھیں تو 3-4 کم ہے, 2 بھی کافی ہوتے ہیں. اگر آپ کی کزنز یا آپ کی جو بڑے جو آپ کی فیملی کے اندر ہیں جن کی ابھی ریسنٹلی شادی ہے, ان کے کبھی بچوں کو اگر آپ فائنڈ آؤٹ کر کے دیکھیں کہ ان کی فیملی کے اندر کتنے بچے ہیں, 2-3 ہی ہوں گے. تو یس, تھنگز آر ورکنگ دیٹ پہ. جو میں نے لاسٹ ٹائم بات بتائی تھی کہ صرف دنیا کے 3 دھکیا نوشی کنٹریز رہ گئے ہیں جن کے اندر پولیو ہے, یہ بات میں نہیں ایکسیپٹ کرتا. کیونکہ پاکستان جتنا مرضی برا ہے, افریقہ کی کتنے زیادہ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, وہاں پہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح مینج کر لیا, سول وار پہ سول وار ہو رہی ہے اور وہاں پہ کوئی پولیو کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی سیریا کے اندر کیونکہ پرابلم ہو رہی تھی اس لیے سیریا کے اوپر انہوں نے کہہ دیا, سیریا میں ایک پولیو کی بیماری نکلی ہے جس کا وائرس پاکستان سے آیا تھا. وہ پتہ نہیں اپنے ساتھ کوئی وہ چھوڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کو انہیں پتہ لگا کہ پاکستان سے وائرس پہنچا وہاں تک. یہ صرف افغانستان اور پاکستان کے اوپر ہی ساری کانسنٹریشن کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہی سارا مسئلہ ہے, ادھر ہی ہم نے ڈی پاپولیشن کو کر رہے ہیں. پچھلے 10-15 سالوں سے جو کرنسی چل رہی ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ اور پلاسٹک منی. پلاسٹک منی کہتے ہیں اسے. فیوچر کیا ہے؟ فیوچر کے اندر ہوگا, ویسے فیوچر اب اتنا فیوچر رہا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پچھلے سال سے ایک چیز آئی ہوئی ہے جس کا نام ہے بٹ کوائنز. ابھی تو کسی کو نہیں پتا ہوگا اس چیز کا, بٹ کوائنس کا. آپ میں سے کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, آپ کسی ٹیچر سے جا کے پوچھیں, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا بٹ کوائن کیا چیز ہوتی ہے. ہاں 4-5 سال بعد جا کے ان کو پتہ لگ جائے گا اچھا بٹ کوائن کیا ہوتا ہے. پھر آپ لوگ ہی اس کے, آپ کے جونیئرس ہوں گے, وہ اس کے اوپر پروجیکٹس بنا رہے ہوں گے, ڈگری پروجیکٹس. بٹ کوائن کیا چیز ہے؟ بٹ کوائن نہ تو پیپر کرنسی ہے, نہ کوئی گولڈ وہ کوائنس ہو گئے, نہ ایون پلاسٹک ہے. یہ صرف کیا ہے؟ صرف ریٹنگس ہیں آپ کی, آن لائن ریٹنگس. پلاسٹک منی ہے وہ, ایٹ لیسٹ کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ اے ٹی ایم میں ڈالیں گے آپ کو پیسے تو نکال کے دے دے گا نا وہ. بٹ کوائنس کیا ہے؟ صرف آپ کی ویلیو, آپ کی ریٹنگز, آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوگا, आपने जो भी अर्निंग की, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स किए, तो जो कुछ भी किया था, वो आपको बिटकॉइन पेमेंट हो जाएगी। उस पेमेंट के अगेंस्ट क्या आपको इतने पॉइंट्स मिल गए, वो जो पॉइंट्स आपको इतने मिल गए थे वो आप उसको उसके थ्रू आपको और परचेज कर सकते हैं। आप कोई बुक ऑनलाइन परचेज कर लें, कोई अकाउंट परचेज कर लें, कुछ एनी थिंग वो आप परचेज कर लें। तो करेंसी का रोल अदा कर रही है क्या चीज़, सिर्फ नंबर्स जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं कि आपके इतने पॉइंट्स हो गए हैं, आपने फलाना प्रोजेक्ट कर लिया था उसने आपको पेमेंट कर दी इतने पॉइंट्स हो गए, वो इवन करेंसी भी नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि ये डॉलर्स में आता है, ये बिटकॉइंस बट डिजिट्स होंगे लिखे हुए आ रहे हैं, और ये बहुत बहुत पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अगेन जैसा मैंने बताया कि हम लोग तो बहुत ही कुछ स्लो मोशन है कि हम लोग बहुत बाद में जाके चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। इस चीज़ से आप ये इमेजिन करें कि बिल फर्ज 10 साल बाद, 20 साल बाद आप इमेजिन करें कि ज़्यादातर आप लोगों ने इसी पे ही अर्निंग करनी शुरू कर दी। मॉडर्न होंगे जितने ज़्यादा, उतने ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें अडॉप्ट करेंगे ना। आप लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया, आपको प्रोजेक्ट की पेमेंट भी इस पे मिल रही है, आप लोगों की सैलरी भी हो गई, आप लोग फिर इससे चीज़ें परचेज भी कर ली, फलाना भी हो गया। अब ऐसा ऐसा करके क्या होगा, अगर ज़्यादा रिलायंस आ गई इसके ऊपर, सिर्फ इमेजिन करें कि वन फाइन डे आप लॉग इन करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और आपको जवाब मिलता है कि ये और अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, बिटकॉइन है ही नहीं आपके, आप कहाँ जाएंगे फिर? ठीक है, ये वो सिस्टम है जो आएगा, दुनिया के अंदर आ रहा है ये सिस्टम, कि बाद में जाके किसी एक बंदे को फारिग करना है तो बस उसका वो अकाउंट ही हटा दो सिरे से। ऐसे से करके ट्रांजिशन हो रही है, अभी एकदम से नहीं सब कुछ हो जाएगा, एकदम से रिलायंस नहीं हो जाएगी। जिस तरह अभी अगर आपने आईफोन या एंड्रॉयड वगैरह ले रहे हैं, ठीक है पायरेसी है सब कुछ है, लेकिन ये सब टेम्प्रेरी है। WTO के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, पाकिस्तान या जितनी भी कंट्रीज दुनिया की, इन सब के अंदर से ये पायरेसी बिलाखिर ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं है ये। तो बाद में जाके जब आपकी रिलायंस हो जाएगी, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहते हैं मेरे पास पैसे हैं जेब में, मैं एंड्रॉयड या आईफोन या कोई और ऑनलाइन एप्लीकेशन खरीदना चाहता हूँ, ये कैश मनी मैं दे दूँ नहीं एक्सेप्ट होगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो जो मॉडर्न चीज़ें आपके पास होंगी उसके थ्रू पेमेंट होगी, बाद में जाके ऐसे करके इन चीज़ों की तरफ आ जाएंगे, आपकी सारी रिलायंस इन चीज़ों के ऊपर हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था 2007 के अंदर और 8 के अंदर क्या हुआ था, जब अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ था, तो बहुत सारे लोग जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ बैंकों में पड़ी हुई थी, अगले दिन उनको पता लगा वो बैंक ही नहीं है, रातों रात जो है वो बैंक बैंकक्रप्ट हो गया था, और उसने अपील दायर कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के आगे कि हम बैंकक्रप्ट हो गए, हमारे पास पैसा ही नहीं है, सिरे से बैंक है ही नहीं, और जो पैसे थे वो गए, सब पैसे गए। फिर ऑयल और एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो इनका कंट्रोल है, ये आप लोग कितने अरसे से खबरें इस तरह की सुनते आ रहे हैं, गाड़ी जो है वो सोलर एनर्जी से चल रही है, गाड़ी फलाने से, इवन कंडेंस्ड एयर का भी होता है, कंडेंस्ड एयर के थ्रू भी गाड़ी को चलाया जा सकता है, एक दफ़ा स्टार्ट किसी और सोर्स से ले लिया जाए, बैटरी से ले लिया जाए किसी और सोर्स से, उसके बाद एक दफ़ा गाड़ी चल रही है ना, तो जो उसको विंड मिल रही है उसे वो कंडेंस करके भी गाड़ी चलाई जा सकती है, सोलर एनर्जी से भी चलाई जा सकती है गाड़ी। फिर इसके अलावा और जो सोर्सेज हैं, जो ज़्यादा चीपर सोर्सेज हैं और ज़्यादा रेडिली अवेलेबल हैं, उनके थ्रू भी गाड़ियाँ क्या बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। लेकिन इस सोचने की बात यह है कि ये आया क्यों नहीं आज तक प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं। अगर आप कभी बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ या कोई और जाता है ना, जो पार्किंग प्लाजाज के अंदर जगह होती है पार्किंग की, उसमें कुछ जगह होती हैं जहाँ पर पार्क करने के आगे ना प्लग लगा होता है आगे, तो लोग चार्ज करते हैं गाड़ियाँ अपनी, बगैर चार्ज होती हैं गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं ये है। लेकिन ये सोलर एनर्जी और ये चीज़ें कभी नहीं आ रही इतने, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, क्यों नहीं किया जा रहा? उससे ग्रिप ख़त्म हो जाती है, उससे ग्रिप ख़त्म हो जाती है। अभी अगर पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ 19 करोड़ जो है आबादी, इससे अगर हर बंदे से हमने लेना है एक एक रुपया लेना है, तो बड़ा आसान हल है, पेट्रोल को थोड़ा सा महंगा कर दो, वो हर बंदा जब भराएगा हर जगह चाहिए होगा, तो डीजल घर के अंदर जनरेटर्स में चाहिए, गाड़ियों के अंदर चाहिए, कहाँ कहाँ आपको चाहिए, हर बंदा भराएगा कितना पैसा आता रहेगा। सोलर एनर्जी से फिर आपकी डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। यही रीज़न है कि आप लोगों को ये बात नहीं पता, कमर्शियल लेवल की सोलर एनर्जी प्लेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान में नहीं इंपोर्ट की जा सकती कमर्शियल लेवल की। हाँ ये हो सकता है गीज़र के लिए आपने ले लिया, 10 ट्यूबलाइट्स चल जाएंगे उसके ऊपर, ये काम हो जाएगा कमर्शियल कैपेसिटी की, कि कम प्लेट छोटी साइज़ के प्लेट्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे। पाकिस्तान में बैन है क्योंकि कंट्रोल इनका हाथ से निकल जाएगा। फिर ऑयल हर बंदे ने यूज़ करना है, और ऑयल जो है वो आपके पूरे मुल्क के जो एनर्जी सेक्टर है सब कुछ है, वो सब कुछ ऑयल पे ही चल रहा है। अब मज़ीद फ्यूचर के अंदर और क्या होना है, ये ज़्यादा रिसेंट इंकशाफ हुआ है, नवंबर 12 अभी गूगल ने एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो है टैटूज़ का, इलेक्ट्रॉनिक टैटूज़ का। इसके थ्रू क्या है कि जो एंड्रॉयड फ़ोन होगा, क्योंकि एंड्रॉयड गूगल का है, एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक टैटू के साथ सिंक्रोनाइज होगा, आपकी बॉडी के कहीं लगा होगा। एक और प्रोजेक्ट है वो कटा हुआ है गूगल ग्लास का। गूगल ग्लास क्या प्रोजेक्ट है, ये जो मेरी ऐनक है ना, जिस तरह एक नॉर्मल ऐनक के आगे इतना सा एक कैमरा लग जाता है, और एक सिर्फ इस साइड के ऊपर एक मोटी सी चीज़ होगी। गूगल ग्लास अभी फ़िलहाल तो महंगा प्रोडक्ट है काफ़ी, कुछ $1000 समथिंग उसकी प्राइस है, लेकिन वो क्या चीज़ है, अब गूगल के पास देखें किस कदर इन मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा आ रहा है। हम ईमेल्स यूज़ कर रहे थे, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारी तस्वीरें गूगल प्लस के ऊपर, जो कुछ आपने पोस्ट कर दिया, उसके अलावा गूगल मैप्स के ऊपर क्या है, वो तो मैं लास्ट टाइम बताया था कि गूगल मैप्स के ऊपर इतना कुछ डाल दिया हम लोगों ने कि सिवाय बाथरूम के बाकी आपको सब कुछ मिल जाएगा गूगल मैप के ऊपर। गूगल वाले नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, ये हम करके दे रहे हैं। किसी एक जानने वाले ने बताया था, पेशावर में रहते हैं, उनकी UN में जॉब है, तो उनकी जॉब क्या है UN के अंदर, कि उन्होंने हर दुकान हर जगह तस्वीर खींच के गूगल के ऊपर मैप ड्रॉ करना है। UN की जॉब मिली भी उन्हें, गूगल मैप्स के ऊपर अपलोड करना है उसे तस्वीर खींच के। एंड्रॉयड तमाम फ़ोन के अंदर GPS तो होता ही है, लोकेशन खुद ब खुद मिल जाएगी वहाँ पे कि ये किधर की थी, वहाँ से तस्वीरें मिल गई और उसके बाद काम चल गया। डाटा देने के कहने का मतलब है हम लोग डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल वाले कोई स्पाइंग नहीं कर रहे मेरे ऊपर। मैं खुद बताऊंगा कि मेरे फ्रेंड्स कौन है, मेरे फैमिली वाले कौन है, मेरे स्टूडेंट्स कौन है, मेरे फलाना क्या है, फलाना क्या, फलाना क्या, फलाना क्या, वो खुद बता रहे होंगे हम लोग। अब गूगल के पास इतना डाटा आ रहा है, और हम में से अक्सर लोगों की अगर तस्वीर अपलोड होगी तो गूगल की जो फेस रिकग्निशन होगी वो उसको डिटेक्ट कर लेगी। अब गूगल ग्लास क्या प्रोजेक्ट है, कि जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, जहाँ मैं देख रहा हूँ ना, वो भी उस हिसाब से पिन पॉइंट करता रहेगा। सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसा मैप्स एक प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन आप बनाएंगे उसके ऊपर। इसके ऊपर किस किस्म की एप्लीकेशन बन सकती है, मिसाल के तौर पर मैं अगर टीचर हूँ, मैं एक एप्लीकेशन ऐसी बना देता हूँ कि मैं क्लास के अंदर आया हूँ और मैं आप सबको देख रहा हूँ ना सिर्फ, तो वो अटेंडेंस खुद ही होती जाएगी कि अटेंडेंस ऐसी ये भी प्रेजेंट 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 सबके ऊपर नज़र दुरा ली मैंने एक दफ़ा, तो अटेंडेंस हो गई। जो एबसेंट है वो खुद ब खुद पता लग जाए कौन एबसेंट है, जो इस क्लास का नहीं था यहाँ पर बैठा हुआ उसका भी पता लग गया उसके बारे में। मैंने किसी के बारे में अगर नोट्स पहले के डाले हुए थे तो वो भी उसके अंदर वो आ जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पूछता हूँ शीशा आपकी क्लास के अंदर कि ऊप के अंदर कौन कौन फेल है, वो तो हाथ खड़ा करें, उसमें मुझे हाथ खड़ा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, उसके अंदर क्या होगा, जब मैं खुद ही उसको करूँगा आप लोगों की तस्वीरों के ऊपर पॉपअप्स आना शुरू हो जाएंगे, ये इसका ये ग्रेड आया, इसका ये ग्रेड है, इसका ये ग्रेड क्या है, बहुत बुरा हाल है। ये तो ये सिर्फ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक ज़माने में एक मूवी आई थी टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर के अंदर जिस तरह वो दिखाया था ना उन्होंने उस दौर के अंदर, वो बस वो चीज़ जो है वो आप समझ लें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल जाएगी। अगर वाकई ये चीज़ डेवलप हो सकती है, अगर पॉजिटिव मायनों में देखें, ये वाकई डेवलप क्या डेवलप हुई भी है, कहने का मतलब अगर वाकई मुझे इस चीज़ का एक्सेस मिल जाए, आप सबको मिल जाए, तो वाकई कितनी पावर है ये, कितनी पावर है ये, कि आपके पास गाड़ी में नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको कैमरा उठाने की ज़रूरत नहीं है, यही पिक्चर खींचेगा आपका, आपको म्यूज़िक सुनने के लिए कान में कुछ घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेगा उसके अंदर ये जो फ्रेम है ना, ये वाला पार्ट उसका, ये आपके ईयरबोन के साथ वाइब्रेट करता है और आपको म्यूज़िक सुनाई देता है, जो गाने या जो कुछ भी होगा। यानी कि आप बैठे हुए हैं इसी तरह बस के अंदर जा रहे हैं, सब सीधे होकर बैठे होंगे, सब फिल्में देख रहे होंगे अपनी अपनी पसंद की। वाकई पावर तो बहुत है ये, लेकिन इससे आप इमेजिन करें कि अब जो जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो जो चीज़ आप आपके हर चीज़ के ऊपर अब गूगल को साहब है। गूगल का जो मोटो है ना वो है टू इंडेक्स द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, उनका ओपन मोटो है ये, पूरी दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको इंडेक्स करना, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये कैप्चर करेगा। अभी तो ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है और अभी बहुत वो समझा जा रहा है कि एक एलीट चीज़ है, अदरवाइज जब जिस तरह मोबाइल्स पॉपुलर होना शुरू हो गए, हर कोई यूज़ कर रहा है मोबाइल्स और लैपटॉप और टैबलेट्स, इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको ये कैरी करना पड़ता है। जो फ्यूचर है वो वेरेबल गैजेट्स का है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें आपके साथ होंगी। اس کے اندر میں نے صرف یہ دو کی خبر ڈالی ہے. اس طرح کے بریسلیٹس آ رہے ہیں جن کے اندر کیا ہے آپ کا وہ ہارٹ بیٹ, آپ کا کولیسٹرول, آپ کے وہ تمام چیزیں وہ نوٹ کر رہا ہوگا. اور اگر آپ کی کہیں طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ یہاں سے ایک ایس ایم ایس بھیج دے گا کہ یار بندہ مرنے والا ہے, جلدی سے پہنچو یہاں تک. ایمبولینس والوں کو ان کو کر دے گا وہ. لیکن یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. جب بے خدا تہذیب ہو جاتی ہے نا تو پھر سارا جو توجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں, میں مرنا نہیں چاہتا, اتنی لائف کی لگژریز ہیں, میں ان کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. میں اور لائف کی کوئی بھی چیز ہوگی, لائف کی کوئی بھی چیز ہوگی, سائنس جتنی جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا زیادہ دجال کا فتنہ گہرا سے گہرا ہوتا جا رہا ہے, اتنی زیادہ جو دنیا ہے وہ آپ کے لیے اٹریکٹیو بنتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے, اس بات کو میں آگے جا کے کور کروں گا, انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ اس کے اوپر سے ڈیولپ ہوگا اس سب سے ہم اس دنیا کو سجائیں گے, وہ اس دنیا کی زینت ہوگا. کیوں؟ کہ نبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم پھر بالآخر یہ جان سکیں کہ اس کے باوجود کون گم ہو جاتا ہے یہاں پہ اور کون پھر بھی نیک عمل کرتا ہے. تو سائنس جتنی ترقی کرے گی اتنا زیادہ دلکشی بڑھتی جائے گی. کسی بندے کو اگر نہیں بھی شوق نہ ٹی وی دیکھنے کا, یا اس کو آپ پہلی دفعہ اگر ایچ ڈی ٹی وی دکھائیں نا اسے آپ, یا کبھی 3D مووی دکھائیں, 3D مووی آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی, 3D گلاسز پہن کے 3D مووی دیکھیں, تو وہ کہے گا واقعی میں تو روزانہ میرا دل چاہے گا فلم ہی دیکھتا رہوں میں. کوئی فلم نہ بھی اچھی ہونا, وہ اس قدر کوالٹی کی چیز ہوگی کہ دیکھنے کو دل چاہے گا. تو ویئریبل گیجٹس کا فیوچر ہے. 2014 کے اندر اب ایک نئی چیز آئے گی آئی پی ٹی ویز کے نام پہ. ایپل کا آئی پی ٹی وی بھی ہوگا, گوگل بھی لانچ کر رہا ہے, بہت ساری کمپنیز ہیں جو لانچ کر رہی ہیں آئی پی ٹی وی. آئی پی ٹی وی کیا چیز ہے؟ کہ اس کی کنیکٹیویٹی ہوگی انٹرنیٹ کے ساتھ, میرا اپنا اکاؤنٹ بنا ہوگا اس کے اندر, میں اپنے اکاؤنٹ کے تھرو جاؤں گا, مجھے اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیزیں نظر آئیں گی اس کے اندر جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, یا جو میں لاسٹ ٹائم کوئی مووی چھوڑ کے گیا تھا یا کچھ پاز کر دیا تھا یا کچھ, وہ مجھے اپنے اکاؤنٹ کے اندر چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو انٹرٹین کرتی ہیں, وہ چیزیں آپ دیکھیں گے, آپ اپنا لاگ دیکھ سکیں گے, پرانے پروگرامز کو ریکارڈ کر سکیں گے اس کے تھرو. اس کے تھرو کیا ہے, ابھی بھی ٹی وی تو آ رہا ہے, گن تو پھیلا رہا ہے ٹی وی بہت زیادہ, فاسٹ اسپیڈ پہ پھیلا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانا نہیں جا سکتا کہ رات کا جو فلانا ڈرامہ لگا تھا نا وہ آپ سب میں سے کس نے دیکھا ہے. یوں ان تک تو نہیں بات پہنچ رہی نا, ان کو تو نہیں پتا, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ ون ڈائریکشنل کمیونیکیشن ہے, بس براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, آگے نہیں پتا کہ ادھر کے کس نے دیکھا اسے. اس کے تھرو کیا ہوگا, ایک ایک بندے کا پتہ لگ رہا ہوگا کہ کس بندے نے کیا چیز کتنی دیکھی ہے. وہ میں نے ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ فیس بک ایک اے آئی کا ایک ٹول بنا رہا ہے جس کا نام اس کے اندر مینشن کیا ہوا تھا میں نے, جس کے تھرو کیا ہے کہ ہر بندے کا سائیکولوجیکل ہسٹری گراف بن سکتا ہے. اس بندے نے نا فلانے مہینے میں وہ چیزیں لائک کی تھیں, تب تب اس کے یہ دوست تھے, جب اس کے یہ دوست ہو گئے یا یہ فلانی یونیورسٹی میں چلا گیا, اس کے فلانے جاب ہو گئے, اب اس نے یہ چیزیں لائک کی ہیں, اس کا ایک سائیکولوجیکل گراف بن رہا ہوگا کہ یہ کس طرح سوچ رہا ہے. یہ تو لاجک ہے. اے آئی کہاں پہ آئے گی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہ آئے گی, جب وہ فیوچر پروڈکٹ کر سکے گا کہ اگر یہ اس پیٹرن پہ چل رہا ہے تو یہ آئندہ کیا کرے گا, پھر یہ بندہ اس کی وہ پریڈکشن کی جا سکے گی. یا یہ کہ جس جس کے سرکل میں فرینڈس میں یہ بندہ ہے نا, یا جس جس کی چیزوں کو یہ لائک کرتے ہیں, ان کی اس بندے کی سوچ جو ہے نا وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت ڈیپ اسٹڈی ہے جس کو یہ صرف ابھی ایک تکے مارے جا رہے ہیں. ایک اور ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوس ہو چکی ہے. اس کو سب سے پہلے ریومر تو آیا تھا کہ ایپل یوز کرے گا, لیکن سب سے پہلے کیا سیمسنگ نے ہے, اسمارٹ واچز. وہی اینڈرائڈ فون, وہی سب کچھ واچ کے اندر ہے. آپ پہن کے پھریں گے اسے, اسکرین جو ہوگی آپ کی وہی ٹچ اسکرین ہوگی اس کے اندر, اور اس کے اندر وہی آڈیو بھی آپ سن سکتے ہیں, سم بھی اس کے اندر لگ سکے گی, تمام چیزیں آپ سرچ کر لیں آپ کو پروڈکٹس مل جائیں گے اس کے اندر. یہ جو سیمسنگ کا نوٹ 3 ہے اس کے اگر آپ ایڈ دیکھیں تو اس کا ایڈ وہ دیتے ہیں سیمسنگ نوٹ 3 پلس گیئر. گیئر کسے کہہ رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ جو کمپینین اسمارٹ واچ ہوگی وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ پروڈکٹ کو دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس طرح کے آئیکنز جو ہیں یہ مختلف جگہوں کے اوپر دیکھے ہو, لیکن کبھی دھیان نہ دیا ہو یہ کیا ہے. یہ جو بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر بھی آئیکن بنا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی یہ ممی ڈیڈی ریسٹورنٹس میں جائیں, میک ڈونلڈس وغیرہ, وہاں پر بھی ان کے پاس جو کاؤنٹر ہے وہاں پہ اس جیسا کہ ایک آئیکن سا بنا ہوتا ہے, ایک اتنی بڑی شیلڈ سی ہوگی وہ پڑی ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں کیو آر کوڈ, کوئک رسپانس کوڈ. یہ ایک पैटर्न होता है जो उस रिटेलर का या उस शॉप का एक फिक्स पैटर्न होगा। अभी क्या क्या दुनिया है या अभी स्टाइल क्या है, अभी स्टाइल चल रहा है फिलहाल अभी तक जो स्टाइल है वो क्रेडिट कार्ड्स के हद तक ही है। क्रेडिट कार्ड्स के अंदर और अट्रैक्ट करने के लिए ये प्लैटिनम है, ये गोल्ड है, ये टाइटेनियम है, आप अपनी पिक्चर अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो मर्जी चाहे लगवा सकते हैं। इवन बच्चों के अकाउंट्स खुल जाते हैं अब तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, फैमिली अकाउंट बना दिया, जो मर्जी तस्वीर डालना चाहते हैं डालते हैं। देखिए उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड साथ कैरी करना है या कैश करना है। आपको बता रहा था कि कैश को ख़त्म करना चाह रहे हैं, कैश के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन होंगी, ऑल दो उन्हीं की बनाई हुई करेंसी यूज़ हो रही है, लेकिन उसके थ्रू मुसीबत क्या है, ट्रेस नहीं हो सकता, उनको नहीं पता लग सकता कि मैंने कैश के थ्रू कल कहाँ पर खाना खाया था या मैं कल कहाँ गया था। क्रेडिट कार्ड से ट्रेसिंग हो सकती है, बड़े आराम से हो सकती है क्रेडिट कार्ड से ट्रेसिंग। तो ये एक उसी की एवोल्यूशन है, नेक्स्ट स्टेप है। ये क्या होता है कि अगर बिलफर्ज मेरे पास स्मार्टफोन है और एक उनकी ऐप इंस्टॉल हुई हुई है जो QR कोड को रीड कर सकती है, तो मैं जाके काउंटर के ऊपर ना कैश दूंगा ना क्रेडिट कार्ड दूंगा, बल्कि क्या करूंगा, फ़िलहाल क्या हो रहा है, फ़िलहाल ये हो रहा है कि मैं अपने मोबाइल से इसकी स्नैप लूंगा और उसके अंदर जो आगे मेन्यू आएगा उस मेन्यू को फॉलो करके फिर मैं बता दूंगा कि मुझे ये चीज़ आप दे दें। यानी कि आपने फॉर इंस्टेंस कोई खाना ऑर्डर करना था, कोई बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है या कोई कपड़े लिए, आगे जाके ये चीज़ें और ज़्यादा आएंगी। फ़िलहाल तो अभी ये सिर्फ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर है, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके अंदर है सिर्फ अभी। तो जो पैसे देने हैं आपने, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही क्रेडिट कार्ड देंगे, वो स्वैप करेंगे, इस पर साइन करेंगे, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके थ्रू आप जब वो खींचेंगे तो आपका जो अकाउंट इसके साथ लिंक होगा वो खुद ब खुद चार्जिंग हो जाएगी उसके थ्रू। और आप ये देखेंगे कि कैश के ऊपर कभी आपको वो नहीं मिलेगा, बेनिफिट ही मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के ऊपर होता है कि अगर आपके इतने पॉइंट्स हो गए तो आपको फलानी लॉटरी में हिस्सा मिल सकता है, इतने पॉइंट्स हो गए इतनी फ्री परचेजिंग होगी। अब क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा जो आपको बोनसेस मिलेंगे वो इस प्रोडक्ट के ऊपर मिलेंगे आपको। अभी कहाँ पे आ गया है, अभी क्रेडिट कार्ड को फिजिकल प्लास्टिक मनी को रिप्लेस कर रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, कि यही चीज़ वेरेबल गैजेट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन होया करेगी। और बिल आखिर इसकी लास्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन क्या हो सकती है, कि ह्यूमन आईडीज दे दिए जाएंगे, बजाय ये कि मैं ऐनक ऐसी पहनूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ, ह्यूमन आईडीज मेरे अपनी बॉडी के साथ, जैसा मैंने गूगल टैटू का आइडिया दिया, मेरी अपनी बॉडी के साथ कोई ऐसी चीज़ लगी होगी जो मेरी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क कर देगी। उसके लिए कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या वही बंदा है, क्या इसका अकाउंट टैली हो रहा नहीं हो रहा, बस मैं मेरी फिजिकल प्रेजेंस होगी और काम चल जाएगा। तो एक स्टेटमेंट मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने नहीं ऐड की, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो मैंने सोचा वो ऐड कर ही देता हूँ। रॉथस्चाइल्ड का नाम पहले भी 2-3 दफ़ा गुजर चुका है, जो सबसे रिचेस्ट फैमिली है बैंकर्स की, ज्यूइश बैंकर्स की, ये उनमें से है, जिसका वो तब जिक्र भी आया था कि जिसने असल में फ्री मेसन को लोन दिया था पैसों का। उनकी एक अपने ब्रदरहुड को इन न्यूयॉर्क ये रिटर्न स्टेटमेंट थी 1863 की। एक और बात ये भी ऐड कर दूं कि ये नाम मैंने आपको इतने बताए थे, ये रॉथस्चाइल्ड है, ये डेविड रॉकफेलर है, ये एलन ग्रीनस्पैन, ये तमाम लोग, इनका नाम कभी सुना नहीं, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इन लोगों ने हम पूरी दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम अपना ख़जाने किस में जमा कर रहे हैं, डॉलर्स में और करेंसीज़ में, ये इनमें जमा ही नहीं करते, ये तो इन्होंने छापे हुए हैं ना, वो क्या स्टूपिड चीज़ है ये नोट, वो तो इन्होंने छापा हुआ है। इनके एसेट्स जो हैं वो गोल्ड और एक्चुअल एसेट्स की फॉर्म के अंदर है। मिसाल के तौर पर आप रॉथस्चाइल्ड को गूगल मैप्स पर सर्च करें, वो आपको जो रिजल्ट्स दिखाएगा ना, यूरोप के बेशुमार जगहों में ये पैलेस उसका है, ये पैलेस है, ये पैलेस है, उनमें से मिसाल के तौर पे एक आइलैंड दिखाएगा एंटार्क्टिका में, वो पूरा आइलैंड ही रॉथस्चाइल्ड का आइलैंड है। तो फिज़िकल एसेट्स के फॉर्म के अंदर गोल्ड उन चीज़ों में इनके एसेट्स हैं जो डॉलर में नहीं गिने जाते। ये बेवकूफ़ नहीं है हमारी तरह कि नोट डॉलर नोटों के पीछे कागज़ के पीछे मरते फिरें। तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी इस तमाम फितने के बारे में, इतनी पुरानी बात 1863, इतनी पुरानी बात, The few who understand the system will either be so interested in its profit, जो लोग जिनको ये सिस्टम समझ लग जाएगा, या तो वो उसके लालच में कि यार इससे थ्रू मैं भी क्यों ना इन्वेस्टमेंट करूँ, इंश्योरेंस है तो मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, लीजिंग के थ्रू मैं भी कर लेता हूँ, और सो डिपेंडेंट अपॉन इट्स फेवर दैट देर विल बी नो अपोजिशन फ्रॉम दैट क्लास, या तो वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो मजबूरन कुछ कर नहीं सकता, या वो इससे और फ़ायदा उठाने के लिए, वो इसके लिए कोई अपोजिशन बनेगा ही नहीं इस हमारे सिस्टम से, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अपोजिशन में वो आएगा ही नहीं. वाइल ऑन द अदर हैंड द ग्रेट बॉडी ऑफ द पीपल मेंटली इनकेपेबल ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग द ट्रेमेंडस एडवांटेज दैट कैपिटल ड्राइव्स फ्रॉम द सिस्टम विल बेयर इट्स बर्डन विदाउट कंप्लेंट. बाकी जो आबादी है उनके अंदर ये अकल है ही नहीं कि वो कॉम्प्रीहेंड ही कर सकें कि ये मसला ही क्या है. अवाम जो है वो तो समझ ही नहीं सकेगी कि ये फितना क्या है, तो इसलिए वो कंप्लेंट करना ही नहीं है उन्होंने. वो सारा बोझ उनके ऊपर होगा. आप पेट्रोल के ऊपर अपनी हुकूमत को तो गालियाँ देते रहेंगे, लेकिन आप असल में नहीं समझेंगे कि यार ये मसला किधर है, ये सोर्स, असल सोर्स क्या है इसका, वो समझ लग ही नहीं सकेगा. इसलिए वो क्या करेंगे, वो कंप्लेंट करेंगे नहीं इस चीज़ के ऊपर. इसके बाद हम वापस इंटरनेशनल स्केल के ऊपर जाके देखते हैं कि अमेरिका या जो वेस्ट है उसकी क्या क्या फेवर्स हैं इसराइल के लिए. अमेरिका सिंस 1976 इसराइल को पर ईयर $500 पर पर्सन देता है. तो अभी जो रिसेंट ईयर्स जो रिसेंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है थोड़ी उनकी, तो $3 बिलियन उनको एनुअली वैसे ही मिल रहे हैं फॉर नथिंग. और सिंस 1982 अमेरिका ने 32 से ज़्यादा रेजोल्यूशंस वीटो कर दी हैं जो इसराइल के किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट जा रही थी. ये आपको बात बताई थी कि अदालत का क्या निज़ाम होता है. अदालत का ये निज़ाम है कि बिलफर्ज अगर एक बंदे के खिलाफ इनफ एविडेंस आ जाए तो ज़ाहिर बात है उसके खिलाफ फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी. तो यूएन जो बहुत पहले ले किसी लेक्चर में बताया था कि इन्होंने यूएन को बनाया ही इस तरह था कि इनकी ज्यादती जो है वो कभी भी उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो सके. क्यों? इन्होंने इतना इलॉजिकल रूल रखा हुआ है कि चाहे पूरी दुनिया के लोग जो हैं या पूरी दुनिया के नेशंस एक चीज़ के ऊपर वोट दे देंगे, तो इनके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक ने भी अगर वीटो कर दिया तो बस बात गई, वो कभी भी रूल इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता. ये खिदमात हैं जो क्रिश्चियन वर्ल्ड दे रही है, अपनी सर्विस दे रही है जो ज्यूज़ को. ये बातें तो हो गई सारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड कि उन्होंने किस तरह पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को ग्रिप में लेना है कि पूरी दुनिया जो है वो खिदमत करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी और हमारी जी मेहनत जो है वो इनको बैंक के थ्रू इन तक पहुँचती रहेगी. इन्हीं की मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, कॉरपोरेशन भी इनकी हैं जहाँ पर जॉब करेगी बाकी इंसानियत, बैंक इनके हैं, सब कुछ इनका अपना है. तो वो तो है ही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ही है. लेकिन इसके अलावा और क्या प्लान्स हैं इनके? उनमें नंबर वन चीज़ क्या है? ग्रेटर इसराइल. थियोडोर हर्ट्ज़ल जो उसका फाउंडिंग फादर है ज़ायनिज़्म का, उसकी ये स्टेटमेंट है कि द एरिया ऑफ द ज्यूइश स्टेट स्ट्रेचेस फ्रॉम द ब्रुक ऑफ इजिप्ट टू द यूफ्रेटिस. जो इराक का दरिया है जो समंदर पर्शियन गल्फ में जाके लैंड करता है, वहाँ से लेके हमें जहाँ पे नाइल ख़त्म होता है वहाँ तक का एरिया जो है ये हमारा इसराइल है. और बाइबल के अतबार से भी इसको प्रॉमिस लैंड का नाम देते हैं वो, कि ये प्रॉमिस लैंड है तो खुदा ने हमें इस चीज़ की गारंटी दी भी है. अब इस चीज़ को देखें, इसराइल फ़िलहाल इधर है और ये सारा उनका नक्शा है. उन्होंने यहाँ तक, ठीक है पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर उन्होंने हुकूमत ही कर ली, उन्होंने आके इंडोनेशिया मलेशिया इन जगहों को अटैक नहीं करना, आगे नहीं करना. क्यों? हमेशा तारीख के अंदर क्या होता रहता था कि अटैक किया क्यों जाता है एक मुल्क के ऊपर? रेवेन्यूज़ के लिए, आइंदा मुस्तकबिल में हमारे लिए कभी ये थ्रेट ना बन सकें और हमें इनके थ्रू रेवेन्यूज़ और टैक्सेस आते रहे, मिलते रहे मिलते रहे. उन्होंने ऐसा निज़ाम बना दिया है बैंकिंग का और मल्टीनेशनल्स का कि उनको सब कुछ मिल रहा है, अटैक करने की ज़रूरत है ही नहीं. अब ये बंदा जो है ये 1904 में मर गया था, इसने तो इवन इसराइल को भी नहीं देखा था. लेकिन गोरों के जो या जो वेस्ट के या जो यहूदियों के ख़ास तौर पर प्लान्स होते हैं वो बेसब्री वाले नहीं होते, वो बहुत बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं. मुगल बादशाह जो था शाहजहां, उसके दौर के अंदर जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने आने की कोशिश की, उनको यहाँ पे ग्राउंड चाहिए था तो इतनी ज़्यादा फेवर्स मिल नहीं रही थी इधर से, फ्री ट्रेड या उनको कोई ज़्यादा फेवर्स नहीं मिल रही थी. शाहजहां की बेटी जो थी वो किसी हादसे में जल गई, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सीरियस वुंड्स आ गई थी और इलाज नहीं हो पा रहा था. ईस्ट इंडिया ट्रेड कंपनी ने अपना एक मॉलेज भेजा कि इसका इलाज कर देगा, उसके इलाज से वो ठीक हो गई. अब बादशाह सलामत बहुत खुश हुए कि क्या फेवर चाहिए तुम्हें, क्या चीज़ चाहिए, ज़मीनें चाहिए, क्या सोना चाहिए, नेम इट, मैं तुम्हें देता हूँ. वो एक ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का एक एम्प्लॉय था, एक मेडिक था उनका, सिर्फ एक मेडिक था. उसने क्या मांगा आगे से? उसने कहा कि आप मेरी कंपनी को यहाँ पे आने की फ्री ट्रेड की तजारत की इजाज़त दे दें बस, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس نے دیوان جاری کر دیا کہ بس ان کو اب سے فری ٹریڈ کی اجازت ہے. اب دیکھیں کہ اس نے یہ نہیں کہا, ہم جیسا کوئی بندہ ہو تو ہم کبھی خاص ڈالیں گے ہم کبھی پاکستان کو, اپنی کمپنی کو یا کسی اور چیز کو, ہم کہیں گے بھائی ہمیں فیور دے دو, ہمیں جی مجھے باہر کا ویزا دے دیں, آپ گرین کارڈ دے دیں, مجھے اتنے ملین ڈالرز دے دیں, یا میرے وہ مجھے گاڑی والی بہت پسند ہے مجھے آپ وہ گاڑی دے دیں, یا فلانی چیز دے دیں. ہم تو اپنی لالچ کے اندر آ جائیں گے, ذاتی لالچ کے اندر آ جائیں گے. جس طرح ہلری کلنٹن جب آئی تھی پاکستان تو ایک اخبار کے اندر جو ایڈیٹوریل پارٹ آتا ہے اس کے اندر یہ آیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے آتا ہے, آن دی ادر ہینڈ ہماری ٹیبل کی اپوزٹ سائڈ پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹرمز بتا رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ آگے سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنی اپنی فیملی کے لوگوں کی اپلیکیشن لے کے آیا ہوتا ہے, میرے فلانا رشتے دار ہے اس کو جاب کروا دیں کسی طرح سے, فلانے کو باہر جانے کی آپ اجازت دے دیں, ویزا مل جائے کہ وہ باہر جا کے پڑھ لے, اپنی پرسنل فیورز مانگ رہے ہوتے ہیں. تو قیامت سے قریب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بتائی ہیں ان کے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نفسا نفسی کے عالم میں پڑ جائیں گے, ذاتی لالچ ہوگا, باقی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی انہیں. لیکن ان کے پلانس دیکھیں, اس نے کیا مانگا, اس نے کہا میری کمپنی کو اجازت دے دیں آپ کے یہاں پہ آ کے وہ ٹریڈ کر سکیں. کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملتی کہ اس کے بعد اس کمپنی نے, ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی نے کوئی اس کو اپنا لیڈر بنا دیا ہو یا اپنا ڈائریکٹر بنا دیا ہو کہ یہ ہمارے پورے کمپنی کا مالک ہے کہ اس نے یہاں پہ آنے کی اجازت دی ہمیں, اس کے ذریعے ہمیں اجازت ملی, ایسی کوئی بات نہیں ملتی. وہ امپلائی رہا تھا اور امپلائی مرا تھا, لیکن اس نے کیا بات کی تھی. اسی طرح ہی یہاں پہ تھوڑے ریہرسل کا دیکھیں, جو اس نے ویژن دیا تھا وہ تو زندہ بھی نہیں رہا تھا اس چیز کو دیکھنے کے لیے, لیکن بات بہت آگے کی تھی اس نے. ایک 1954 کا ایک انٹرویو ملا ہے مجھے کنگ سعود کا, جو کنگ فہد کنگ فیصل کا باپ تھا, اس کا ایک انٹرویو, اس کی اسکین کاپی لایا ہوں میں. اس کے اندر اس نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کا جو اصل پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے, جس کے اندر عراق اور شام, اردن یعنی کہ جارڈن, سیریا, لبنان, ایجپٹ, سنائی پیننسولا اور سعودی عرب کا بھی ذکر کیا ہے کہ مدینہ کے حد تک, یہاں تک ان کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا. مدینہ کیوں شامل ہے, ان کو کیا انٹرسٹ لگے مدینہ سے؟ اصل میں گریٹر اسرائیل کے اندر وہ تمام وہ ملک چاہتے ہیں جو ان کی ہسٹری کے اندر, جن جن ملکوں کے اندر, جن جن علاقوں کے اندر یہودی جو ہیں وہ آزاد رہے ہوئے ہیں, ان تمام علاقوں کے اوپر وہ اپنی گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں. تو مدینہ کے اندر یثرب جو تھا اس کے اندر, اگر آپ بہت پرانی ہسٹری پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے کی, تو جو عرب تھے وہاں پہ, جو اوس و خزرج تھے, ان سے پہلے یہ لوگ آئے تھے. میں نے ایک پرانی سلائیڈ بتائی تھی خیبر میں کب آباد ہوئے تھے, تو 135 AD کے اندر جب ایمپرر ایلیس ہیڈران جو تھا رومن امپائر کا, اس نے جوپیٹر ٹیمپل بنائی تھی جہاں پہ بیت المقدس ہے, تو یوز نے ریولٹ کیا تھا. اس کے بعد جو ان کو بھیجا گیا تھا ایگزائل میں, تو وہاں سے نکل کے اس زمانے میں آباد ہوئے تھے یہ. تو اسی لیے مدینہ کے اندر کیوں زیادہ مالدار تھے, کیونکہ زیادہ زرخیز جو جگہ تھی مدینہ کی ان کے اوپر یہودی تھے, خیبر میں یہ تھے, ان جگہوں پہ یہ آزاد تھے, غلام نہیں تھے ان جگہوں پہ. تو جن جن جگہوں پہ یہ آزاد رہے ہوئے ہسٹری کے اندر کہیں بھی, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے گریٹر اسرائیل کا. ایک ڈاکیومنٹری آئی ہے بی بی سی نے نکالی ہے, دا اسٹوری آف جوز, 5 پارٹس کے اندر ہے, ابھی ریسنٹ چند مہینے پہلے اسرائیل کی ساری بات کی ہوئی ہے. اس کے اندر کلیئر کٹ آرام آرام سے باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی گاڈ نے جب ہمیں یہ بات دی ہوئی ہے, بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے, بی بی سی آفیشلی سمجھا کیا جاتا ہے کہ وہ انبائسڈ ہے, تو اس کی بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کے اندر ہے کہ جب ان کو یہ یہاں پہ رہے ہوئے ہیں پہلے سے, ان کے فور فادرز رہے ہوئے ہیں, ان کی انسیسٹرز رہے ہوئے ہیں, تو ان کا یہ نیچرل رائٹ بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے رہیں. ایریل شرون جو ہے, جو جتنی بھی اسرائیل کی وار جو ہوئی ان کے اندر ایز سولجر بھی لڑا ہوا ہے, اور بعد میں پرائم منسٹر بن گیا تھا اسرائیل کا. 2006 کے اسٹارٹ کے اندر اس کو پھر برین ہیمریج ہوا تھا, اور اس کے ابھی تک 7 سال ہو گئے ہیں, اس کے مرنے کی خبر نہیں آئی, 8 سال ہونے کو آ رہے ہیں. بلکہ گریٹر اسرائیل کے پلان کو اچیو کرنے کے لیے اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے عراق وار سے پہلے کی, 17 February 2003 کے اندر اس نے کیا کہا تھا کہ ایران, لیبیا اینڈ سیریا آر ایرسپانسبل اسٹیٹس which must be disarmed of weapons of mass destruction and a successful American move in Iraq as a model will make that easier to achieve. کہ امریکن اٹیک آن عراق جو ہوگا وہ ایک ماڈل ہوگا, تو آئندہ ہم لوگ پھر اچیو کر پائیں گے. اچھا آپ نوٹ یہ کریں کہ کن ملک کی بات کی ہے, ان میں سے کون کون سے فارغ ہو چکے ہیں, لیبیا فارغ کر دیا کہ نہیں کر دیا انہوں نے, लीबिया का क्या हाल है? सिविल वॉर, मार धार है, फिर मरे हुए मारे जा रहे हैं, दूसरे को कत्ल गारत किया हुआ है। सीरिया का क्या हाल है? मार धार कत्ल गारत किया हुआ है। और कमाल इनकी अकल का, सोच का ये है, जिस बात को अल्लाह ताला ने मेंशन किया हुआ था कि मैंने इनको पूरी दुनिया जहान के लोगों में क्यों चुना था, इनको इल्म की बुनियाद के ऊपर चुना था। तो मैंने जब बात बताई थी कि जब इन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मुंह मोड़ लिया था, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद से ये फिर अल्लाह के खिदमतगार नहीं बन गए थे, बल्कि ये तब से शैतानी जो कुव्वत है उसको लीड कर रहे हैं ये। तो कमाल क्या किया सीरिया के अंदर, सीरिया के अंदर इनको अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीरिया के अंदर इनको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं की। इन्होंने क्या किया, सीरिया के अंदर शिया सुनी सिविल वॉर लगा दी उन्होंने। ऑफिशियली सीरिया जो है वो शिया है, लेकिन शिया की एक बहुत डेवियंट फॉर्म है, अजीब अजीब से अकायद हैं। फिर इसके अलावा जो हमास और हिजबुल्ला, ये दोनों जो उनके मुताबिक अमेरिका ने जो फतवा दिया हुआ है वो क्या है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मिला दिए। एक तरफ सीरिया को हेल्प कर रहा है ईरान, और ईरान ही हेल्प करता है असल में हमास और हिजबुल्ला को। दूसरी साइड के ऊपर जो अपना सो कॉल्ड अलकायदा बनाया हुआ है, उसी को उन्होंने, क्योंकि अलकायदा या जो दहशतगर्द या तालिबान या ये जो भी नाम है, ये क्या है, ये सुन्नी तहरीकें हैं, इनको लगा दिया है खिदमत के लिए कि तुम रिवोल्ट करो। जो रेबल्स हैं वो सारे सुन्नी हैं, जो ऑफिशियल लड़ रहे हैं वो सारे शिया हैं, और ख़ुद पैसा नहीं खर्च कर रहा, शिया की सारा पानी की तरह पैसा बहा रहा है ईरान, और सुन्नी के लिए कौन पैसा बहा रहा है, सऊदी अरब। क्या कमाल है इनका कि इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया 10 साल पहले, तो 11 साल होने को आ रहे हैं इस बात को, 11 साल पहले उसकी स्टेटमेंट देखें किस तरह, एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा उनका, मारे जा रहे हैं, रोज़ाना कत्लो गारत हो रहा है। और तीसरा कौन सा मुल्क है, ईरान। ईरान का आपको पता है कि ईरान को खुद कहना पड़ गया है कि भाई हमारे ऊपर से सैंक्शंस ख़त्म करो, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना जो है हम रिवर्स करते हैं, सैंक्शंस ख़त्म करो। 2008 ऑनवर्ड से इसराइल जो है वो बहुत ओपन स्टेटमेंट्स देता आ रहा है कि हमारे पास यूनिलैटरल राइट है टू अटैक ईरान, जिससे हमने पहले किया था इराक की दफ़ा 80s के अंदर, इराक के ऊपर अटैक किया था इसराइल ने, और रातों रात उनके जो न्यूक्लियर जो उनके प्लांट थे जो कुछ था वहाँ पे उनको रेस्ट टू द ग्राउंड करके रख दिया था। तो उसी तरह ही हमारे पास भी राइट है। इराक के अंदर जो अटैक हुआ था उससे हुआ क्या है, थाउजेंड एंड थाउजेंड जो हैं वो इराकी मर चुके हैं, एस्टिमेट है ही नहीं। अगर आप जानना चाहें ना ऑफिशियली, तो कोई एस्टिमेट ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये वज़ीरिस्तान इस मामले में इमरान खान क्या कहता है कि गवर्नमेंट को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो कोई फिगर्स तो दे कम से कम, कितने मर्द मरे हैं, कितनी औरतें मरी हैं इसके अंदर, और उनमें से कितने दहशत गर्द हैं, तो कुछ अंदाज पता ही नहीं है, परवाह कभी की ही नहीं है हमने। तो इसी तरह यहाँ पर भी कोई एस्टिमेट नहीं है। अलबत्त 2006 के मिड के अंदर एक अमेरिकन एनजीओ ने सर्वे किया था कि 6.5 लाख से ज़्यादा इराकी सिविलियंस मारे जा चुके हैं 2006 के समर में, जब सिर्फ 3.5 साल हुए थे इस जंग को, 3.25 साल। अब तो कितना ज़माना और गुजर चुका है। हाँ, अमेरिकन ने कितनी उन्होंने जाने दी, 4,000 से ज़्यादा है अमेरिकन, उनके तो नाम हर चीज़ मौजूद है। और अमेरिका का कितना पैसा लगा है इसमें, $500 अरब, $500 बिलियन अमेरिका का डूबा है इसमें। क्या गुनाह क्या था इराक का, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अलकायदा के साथ, और बाद में जब सब कुछ झूठा था तो अमेरिका ने सिर्फ ये कह दिया, सिर्फ ये कहना था कि हमारी इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत साबित हो गई। किसी ने आज तक यूएन में कोई बिल पेश किया कि अमेरिका का एहतसाब तो होना चाहिए? किसी ने बिल पेश किया, किसी मुस्लिम कंट्री ने डिमांड किया? नहीं। और अमेरिका की ओपन स्टेटमेंट्स हैं कि ये वॉर जो हमने लड़ी थी, इवन गल्फ वॉर 1 जो थी उसके बारे में भी, और अब भी, ये हमने ये सब कुछ किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इसराइल। उनके जनरल्स की भी स्टेटमेंट है और उनके पॉलिटिशियंस की भी स्टेटमेंट है। और खिदमत का हाल ये देखें कि अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी को 2004 के अंदर जॉर्ज बुश ने जो खिताब किया था उसके अंदर उसने ये वर्ड्स बोले थे, जिसके मैं मुख्तलिफ एक्सट्रैक्ट्स निकाले हुए मैंने। द यूनाइटेड स्टेट्स इज स्ट्रांगली कमिटेड एंड आई एम स्ट्रांगली कमिटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ इसराइल। By defending Israel, you are also serving the cause of America. जो अमेरिका का जो असल मकसद है वो भी पूरा हो रहा है जब हम इसराइल की प्रोटेक्शन और उसकी खिदमत कर रहे हैं. इवन जो इसराइल के अंदर जो इंसाफ परस्त जो सोचे हैं Jewish Voice of Peace, उसने भी ये कहा है कि ये इराक वॉर ये सब कुछ हुआ ही अमेरिका ने सिर्फ इसराइल के लिए किया था. इंसानों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है. सीरिया का जो प्रेसिडेंट है, सीरिया का जो लीडर है असद, उसने भी ये कहा है कि इसराइल जो है ये सब कुछ कर ही ग्रेटर इसराइल के लिए रहा है. जो सीरिया वॉर है ये इसराइल चाह रहा है कि हो. अभी जो रिसेंट कू हुआ है इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के अंदर क्या हुआ था, इजिप्ट के अंदर इतने सालों के बाद एक पब्लिक गवर्नमेंट आई थी इलेक्टेड, जिसके ऊपर अमेरिका दर्श दे रहा होता है जिसके कि आप डेमोक्रेसी लाए अपने मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट हो, उसके थ्रू डेमोक्रेसी के थ्रू हुआ था. इंडिपेंडेंट यूरोपियन और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एनजीओस, उन्होंने खुद कहा था कि इजिप्ट के जो वोटिंग हुई है, जो इलेक्शंस हुए हैं, वो फ्री भी थे और फेयर भी थे, उसमें कोई रेकिंग नहीं हुई. नतीजे में कौन आया था, मुस्लिम ब्रदरहुड आया था, इख्वानुल मुस्लिमीन आए थे. अब ये अमेरिका को मंजूर नहीं था और वेस्ट को भी मंजूर नहीं था और ना ही ये इसराइल को मंजूर था कि कहीं दुनिया के अंदर इस्लाम के नाम की गवर्नमेंट आ जाए. तो अगर इस्लाम के आना शुरू हो गया तो मसला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इजिप्ट ही तो वो कंट्री है जहाँ पे ये अरब स्प्रिंग हुआ था. अरब के अंदर जितने मुल्कों के अंदर अपराइजिंग हुई है, इजिप्ट के अंदर ही हुई है ना, सब के सब कंट्रीज जो हैं वो इजिप्ट की तरफ देख रहे थे. इजिप्ट के अंदर अगर इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई और अगर इंसाफ होना शुरू हो गया, कोई एक चीज़ तो नाफिज होगी. जहाद के लेक्चर्स के आखिरी लेक्चर्स के अंदर मैंने एक हदीस सुनाई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अकामत हद दिन मिन हदूदुल्लाह, अल्लाह की हदों में से, अल्लाह ताला के कानून में से कोई एक कानून का भी नाफिज हो जाना, अगर मुल्क में नाफिज हो गया वो, ये 40 रातों की बारिश से ज़्यादा खैर और बरकत लेके आएगा. 40 रातों के अंदर जो बारिश हो और उससे जो फसल को और इरिगेशन को और पानी की कमी जो पूरी होती है, उससे ज़्यादा खैर और बरकत आएगी अगर अल्लाह ताला के हुक्म में से कोई एक हुक्म भी नाफिज हो गया. ये तो गवारा नहीं था. तो उन्होंने क्या कर दिया, मिलिट्री कू हो गया और उठा के सबको जेल में डाल दिया. और जो जो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मार रहे हैं. एक होता है ना कि जेल में, जैसा पाकिस्तान के अंदर वकला तहरीक वो थी, उसमें गवर्नमेंट ने एडीज कत्ल तो नहीं किया था, वकीलों को कत्ल तो नहीं किया था, उधर डायरेक्ट कत्ल किए जा रहे हैं. तो ये अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है, तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी. है इसराइली एम्बेसडर कॉल्स अलसिसी अ नेशनल हीरो फॉर द ज्यूज. इसराइली एम्बेसडर जो इजिप्ट के अंदर है, उसने जो आर्मी चीफ है उनका इजिप्ट का, उसको कहा ये हमारा नेशनल हीरो है. क्यों नेशनल हीरो है, इस खबर को अगर पढ़ें तो ये क्या है कि ये जो है असीसी जो है बाय बर्थ ये ज्यू था और इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी. तो अब जाके ये रिलीज हुआ है कि ये ज्यू था और इसराइल ये कह रहा है, इसराइल के ओपन स्टेटमेंट ये अली कि इसने हमारा जो कॉज था इसने उसी को ही पूरा किया है और इजिप्ट जो है वो हमारा अब पार्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल ही है. किस तरह इसराइल जो है पूरी दुनिया के अंदर इक्वालिटी का दर्ज दे रहे हैं, इसराइल जो है वो इटसेल्फ रेशियस कंट्री बना रहे हैं उसे. इवन अगर वहाँ पर नेशनल बनना है तो आगा प्रॉपर डीएनए टेस्ट होगा कि क्या वाकई आप यहूदी लाइनेज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और इसराइल के मुल्क के अंदर जो अरब अभी भी आबाद हैं उनके अंदर ये है कि अगर कोई अरब जो है वो किसी इसराइली से शादी कर भी ले बिलफर्ज, वो कभी भी नेशनल नहीं बन सकता उसका. ये उनके हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो है एक पिटीशन को रद्द किया है. ओपन क्राइम के बारे में एक चीज़ देखें, ये खबर है गार्डियन के अंदर आई थी 15 सितंबर 2004 को. शेरॉन, वही एरिक शेरॉन जिसका मैंने आपको दिखाया था, शेरॉन हिंट्स दैट यासिर अरफात मे बी किल्ड. यह है खबर, ना भी अगर पढ़ी हो, ये तो मुझे खुद याद है अच्छी तरह कि बीबीसी देखते हुए ये खबर आई थी कि एरिक शेरॉन ने अपने पार्लियामेंट को श्योरिटी दी है कि यासिर अरफात विल डाई, वो मर जाएगा. नवंबर में जाके, इसी साल के नवंबर में यासिर अरफात फिर मर गया था. और मरा कहाँ था, इलाज के लिए उसको भेजा था, पेरिस भेजा था उसे, तो वहाँ पर वो मर गया था. इसराइल ने बड़ी सेलिब्रेशन की थी और इसराइल ने यह कहा था पीस प्रोसेस जो है अब पॉसिबल है फ़लस्तीन के अंदर या और इसराइल के साथ. और अभी रिसेंट खबर आई है नवंबर 6, 2013 को, और ये किसी मुसलमान ने नहीं दी, वरना अगर किसी मुसलमान ने दी होती तो हम कहते हैं कि झूठ बोल रहा है. فلسطینیوں نے ہی کہا تھا اس دور سے کہ یہ اس کو پوائزن کیا گیا, یاسر عرفات نیچرل ڈیتھ نہیں مرا, ہسپتال کے اندر اس کو پوائزن کیا گیا. جو سوئس رپورٹس آئی ہیں انہوں نے اس بات کو کنفیس کیا ہے کہ یاسر عرفات واز ایکچولی پوائزنڈ, اس کو واقعی پوائزن کیا گیا تھا. اس کے بارے میں کبھی کوئی انصاف نہیں ہوگا, کبھی کوئی انٹرنیشنل عدالت کے اندر, یو این کے اندر کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا خیال یہ ہے, ان کی تالمود جو کتاب ہے, تالمود کون سی کتاب ہے؟ تالمود ان کی وہ کتاب ہے جو ان کا اورل ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے. ایک بہت پہلے کی کلاس کے اندر, شروع شروع کے اندر بنی اسرائیل کی کلاس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی اور جب کوہ طور پہ بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بڑے بڑے سردار بھی گئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے خاص لیول پہ جا کے ان کو روک دیا تھا کہ اس سے آگے صرف میرا معاملہ ہے, تم نے ادھر ہی رکنا ہے, ادھر انتظار کرنا ہے, بس دعا کرو اللہ کے آگے اور اللہ کی عبادت کرو. تو ان سے یہ جھوٹی روایت موجود ہے کہ ان کو ایک علم دیا تھا اللہ نے, اور وہ علم جو ہے وہ جوڈیزم کے اندر اورل ٹریڈیشن کہلایا جاتا ہے. تو اورل ٹریڈیشن ان کے تھرو ان کو خاص علم دیا گیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا, اور وہ آگے کیری فارورڈ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا. اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم لوگوں نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا تو ہم کبھی کہاں ان چیزوں کو جانتے ہیں اور کہاں ہم نے بائبل پڑھی ہے. تو جیسس کرائسٹ جو ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں بائبل کے اندر جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے جو اورل ٹریڈیشن ہے اس کے اوپر جھوٹ بولا ہوا ہے خدا کے بارے میں. تو تالمود جو ہے بیسکلی وہ کمپائلیشن ہے اورل ٹریڈیشن کی. اس کے اندر انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جو نان جیوز ہیں, جن کو گوئمز بھی بولتے ہیں, جینٹائلز بھی بولتے ہیں, ان کو راب کرنا, فراڈ کرنا, ان کے ساتھ چیٹ کرنا, دھوکہ دینا, ایون قتل کر دینا, اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا یہودیوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ جو جینٹائلز یا گوئمز ہیں یہ انسان نہیں ہے, یہ حیوان ہے, بس انسانوں جس سے ایوالو کر گئے ہیں, ادروائز یہ حیوان ہے یہ, اور ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح اگر آپ گھر میں کوئی جانور پالا ہو, جس طرح پہلے وقتوں میں ہوتا تھا, لوگوں نے اپنے گھروں میں پالے ہوتے تھے جانور, آپ اس کو جس طرح مرضی ایکسپلوائٹ کرتے رہے, یوز کرتے رہے, اور جب آپ کا دل چاہے تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں, کوئی آپ سے کرائم تو نہیں ہوتا نا, یہ کرائم تھوڑی ہے یہ. اسی طرح جینٹائلز اور گوئمز کے ساتھ جو مرضی ہم سلوک کرتے رہیں کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کا یہی جو گناہ ہے اس کو ذکر کیا ہوا ہے. ایک حصہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 75 کا, قالو, یہ ان کا کہنا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل, ہمارے اوپر کسی قسم کا, یہ جو ان پڑھ امیر لوگ ہیں نا, ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں ہے. ہاں, ایک دوسرے کو ہم نے دھوکہ نہیں دینا, جیو کسی اور جیو کو دھوکہ نہ دیں, ادب ہے جو مرضی کرتے رہو. اور 100% یہی بات ہے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ایریل شرون نے کی تھی 25 مارچ 2001 کو, اسرائیل مے ہیو دا رائٹ ٹو پٹ ادرس آن ٹرائل, جس مرضی کا چاہے احتساب کر سکتا ہے اسرائیل, بٹ سرٹنلی نو ون ہیز اے رائٹ ٹو پٹ دا جوئش پیپل اینڈ دا اسٹیٹ آف اسرائیل آن ٹرائل. کھلی اسٹیٹمنٹس ہیں, کوئی چھپی بات ہے ہی نہیں کسی قسم کی. تو ایک تو پلان ہو گیا کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہی بنانا ہے, ایک اور ان کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گریٹر اسرائیل کو بنائیں گے تو ہمیں ایک اور چیز بھی کرنی ہے کہ ہمارا جو کعبہ ہے یا ہمارا جو حرم ہے ہم نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے, کیونکہ یہ جو بنا ہوا ہے نا آلریڈی ڈوم آف راک اور مسجد اقصا, یہ تو مسلمانوں نے بنایا تھا حضرت عمر کے دور سے, جب اسلام وہاں پہ گیا تھا اس کے بعد سے یہ کنسٹرکشنز ہونی شروع ہوئی تھیں. اس کو ہمیں گھرانا ہے, بیت المقدس بھی گرانی ہے, اور ہم نے ڈوم آف راک جو ہے قبۃ الصخرہ اس کو بھی گرانا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر بہت بڑا ایک تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے, اسی طرز کے اوپر جس طرز کا سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا ٹیمپل آف سولومن. اور یہ نہیں کہ ان کے کوئی مولوی یہ باتیں کر رہے ہیں, اوپن خبریں ہیں, ان کے منسٹرز بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں. یہ خبر جو ہے یہ اوباما اور نیتن یاہو, جو ان کا آج کل کا پرائم منسٹر ہے, ان کی بات ہو رہی ہے, بینجامن نیتن یاہو اور اوباما کی آپس میں ڈسکشن, کہ اگر تھرڈ ٹیمپل بن گیا نا تو پھر ہمارا پیس جو ہے یہاں پہ یا گریٹر اسرائیل کا یا اسرائیل کا جو پروٹیکشن ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے گی. اوپن خبریں ہیں گریٹر اسرائیل کے بارے میں. دا زائرنس پلان فار دا مڈل ایسٹ اور لیکوڈ پارٹی جو ہے اس نے ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے یہ آج کل کی خبریں ہیں, نومبر 6 2013 لیکوڈ پارٹی جو آج کل گورنمنٹ کے اندر اس نے جو رٹ لگائی ہوئی ہے امریکہ نے, اور یہ کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن ہوگا, ایک پیلسٹینین اسٹیٹ ہوگا, ایک اسرائیلی اسٹیٹ ہوگا. انہوں نے صاف کہا ہے کہ ایسا کوئی سلوشن اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. जब मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा था तो मैंने एक बुक ढूंढना चाही थी कि मुझे कोई आजकल की बुक मिल सके इनके बारे में, और किसी गोरे की बुक मिले, तो मुझे ये बुक मिली थी, गोलायथ, मैक्स ब्लूमेंथल की लिखी हुई बुक है। ये खुद भी ज्यू है, खुद भी यहूदी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंसाफ पसंद यहूदी है। इसने इस बुक के अंदर बहुत डिटेल के अंदर मेंशन किया हुआ है कि इनके क्या क्या गुनाह रहे हुए हैं, आजकल कितनी ज्यादती की जा रही है किसी तरह से यहूदियों, किसी तरह से इन इलाकों से अरबों को निकाल दिया जाए। पहले से निकालते आ रहे हैं, जब 48 के अंदर ये बना था तो 7.5 लाख से ज़्यादा जो लोग थे उनको एक्सपेल किया गया था, निकाला गया था, बेशुमार को मारा गया था। इनकी ज़िंदगी को तंग किया जा रहा है, जॉब्स इनके लिए होती नहीं है, वहाँ पर रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है ताकि वो किस तरह से छोड़ के निकले यहाँ से। इवन इस बुक के अंदर ये भी मैंशन है कि कॉन्डोलिज़ा राइस जो थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हुई है अमेरिका की, उसने ये भी प्रपोजल दिया था कि हम लोग फेलस्तीनियंस के लिए हम लोग एक सेटलमेंट की बंदोबस्त कर सकते हैं चिली और अर्जेंटीना के अंदर। इन मुल्कों के साथ अमेरिका ने एग्रीमेंट कर लिया कि अगर फ़लस्तीनी चाहे ना तो वहाँ पर जा सकते हैं, आप उनको नेशनलिटी दे देना, उधर उधर निकल जाओ यहाँ से। इस बुक के अंदर बहुत डिटेल्स मेंशन हुई हैं, वो फोर्स बहुत सारी बातें कोटेशन देने वाली है नहीं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इनका काम फुल मोशन में जारी है, और इसके साथ साथ ये जो थर्ड टेम्पल, ग्रेटर इसराइल, ये सब कुछ जो है प्लान्स सब चल रहे हैं। इस सब को अचीव करने के लिए एक जंग की ज़रूरत है। जंग होती है तभी तो नक्शे बदलते हैं दुनिया के, जंग की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड वॉर 3 कह लें, या बाइबल के अंदर इसको कहा गया है आर्मागेडॉन, या हमारी अहादीस की किताबों के अंदर इसको कहा गया, आपस में फरमाया है कि बहुत बड़ी जंग होगी तुम लोगों की रोमियों के साथ। उसके अंदर क्या आपस में फरमाया था, अलमलहमतुल कुबरा अलमलहमतुल उज़्मा, बहुत बड़ी जंग होगी तुम्हारी रोमियों के साथ। रोमियों का जिक्र आ रहा है, रोमी जो थे उस दौर के अंदर वो रोमन एम्पायर जो था वो क्रिश्चियन था। आप सल्लम की इस हदीस के अंदर एक बात यह है कि रोमियों के साथ जंग होगी तुम्हारी, यानी कि अभी ये दुनिया के हालात देखें तो है कौन वहाँ पे, यहूदी आबाद है, लेकिन जंग किसके साथ होगी, क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ तुम्हारी जंग होनी है। यानी कि उन फेस टू फेस तुम उनके साथ हो, इसराइल तो पीछे है, यहूदी तो पीछे हैं, वो सामने नहीं आ रहे, अमेरिका आ गया है या वेस्ट आ गया है, वो खिदमत अंजाम दे रहा है। जिसना मैंने आपको भी बताया था बुश की स्टेटमेंट और इराक के अंदर क्या क्या खिदमत कर चुके हैं वो। इब्ने माजा की एक हदीस है कि आप सल्लम ने फरमाया था, अर रोम यजतमेऊना ले मलहमत, रोम जो है रोमन एम्पायर जो है वो दोबारा इकट्ठा हो जाएगा तुमसे लड़ने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लम के दौर में रोमन एम्पायर जो था ये तो एक एम्पायर था, दोबारा इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ये क्या बात है। तो देखें ये एक और पेशन गोई के ऊपर पेशन गोई आप सल्लम की। रोमन एम्पायर इसका मतलब है कि पहले यकीनन टूटेगा, वो टूटा और ये यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म हो गए सारे। अब क्या कहा जा रहा है, यश तमेऊन, जुड़ जाएगा, दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये यूरोपियन यूनियन क्या है फिर, यूरोपियन यूनियन, ये आप सल्लम जिस चीज़ की बात करें वो यूरोपियन यूनियन है वो, कि दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, जंग चाहिए उन्हें, लेकिन ये सब कुछ कर क्यों नहीं रहे, यानी कि किसका इंतजार हो रहा है। इंटरनेशनली जितने मर्जी क्राइम कर लें कोई उनसे पूछ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, पैसे का कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया का पैसा इनके कदमों में है, ज़खायर कदमों में है, ऑयल रोका नहीं जा सकता, जिसने रोकने की कोशिश उसको कत्ल कर दिया, किस चीज़ का इंतज़ार है फिर, रह क्या गया है। उन्होंने अपने रास्ते में जो कुछ पहले ऑब्स्टिकल्स रह गए हैं उन्होंने उसको हटाना है। उनके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक पाकिस्तान है, एक ईरान है। ईरान जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ये वो जानते हैं न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और वो ये भी जानते हैं कि ईरान दावा कर रहा है, अहमदीनेजाद जो है वो कह रहा था हमारे पास न्यूक्लियर वेपन बस बनने के करीब हो गया है, यूरेनियम इनरिच हो गई है, लेकिन वो जानते हैं कि टेक्निकली इस लेवल पर नहीं है ये लोग अभी, इनको हेल्प चाहिए, और हमने रखी हुई है नज़रें गहरी कि इन तक कहीं हेल्प पहुँचे ना। और ईरान ने तो वैसे भी अब बात मान ली है कि ठीक है हम नहीं इनरिच करेंगे, आप आगे चेक करते जाएं और हमारे ऊपर से सेंक्शन उठाएं। अब मैं ज़रा इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें डायरेक्ट कंसर्न कर रहा है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो आगे जो फर्दर प्लान्स इनके हैं उनके बीच में जो रास्ते में एक चीज़ हायल है वो क्या चीज़ है। अब वैसे तो कहने को पाकिस्तान इसराइल के कोई रिलेशनशिप्स है ही नहीं। 1947 के अंदर डेविड बेन गुरियन जो है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, उसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक टेलीग्राम भेजा था जिसके अंदर उसने पेशकश की थी कि आप और हम जो हैं हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, हमारी एम्बेसी खुलेगी पाकिस्तान में, आप उधर खुलें, हमारे कोई सफारती ताल्लुकात कायम हों। कायदे आज़म ने कोई रिप्लाई नहीं किया था, सिंपली इसको इग्नोर किया था और उठा के साइड पर रख दिया था उस टेलीग्राफ को। क्यों? कायदे आज़म जैसे शख्स के एक स्टेटमेंट है और वो कायदे आज़म ही दे सकते थे, और कोई बंदा दे ही नहीं सकता, कोई मुस्लिम लीडर वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता, वो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलने वाली स्टेटमेंट आपको, इवन इंटरनेट के ऊपर भी आपको नहीं मिलेगी स्टेटमेंट। वो क्या है? इसराइल इज़ द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, वेस्ट जो है उसकी नाजायज़ औलाद है इसराइल। या वो कोई लीडर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी ओपन स्टेटमेंट दे सके। कायदे आज़म के फौत होने के बाद जिस शख्स को कायदे आज़म ने कहा हुआ अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर कि ये मेरा राइट हैंड है, लियाकत अली ख़ान, पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर मैंने कायदे आज़म के ऊपर लेक्चर किया था, और लेक्चर देने से पहले 5-6 लेक्चर्स थे, लेक्चर देने से पहले मैंने कोई SMS फॉरवर्ड नहीं किया था कि किस टॉपिक के ऊपर है, बस मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात शुरू करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने एक महीने से मैं मेहनत करता आ रहा हूँ, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी थी, बहुत कुछ पढ़ा था उसके लिए कि इस टॉपिक के ऊपर देना है। लेकिन मैंने नाम क्यों नहीं लिया था कायदे आज़म का? नाम लेता तो मुझे यकीन था किसी ने नहीं आना था। तो हुआ भी यही था, जो पहला लेक्चर हुआ था जब किसी को नहीं पता था कि क्या टॉपिक है, बस मैं उसकी हाइप क्रिएट की थी जान के, तो ये भरा हुआ था रूम, यही रूम था भरा हुआ था पूरा। और यकीन करें आखिरी जो लेक्चर था ना उसका, जब असल बात की तरफ आना था तब हार्डली 6 स्टूडेंट्स थे, वो क्लासेस हो ही नहीं सकी थी सही तरह से, इसलिए फिर मैं उसका रिकॉर्डिंग जो थी वो मैंने अपलोड भी नहीं की थी। लियाकत अली ख़ान के साथ क्या हुआ था कि लियाकत अली ख़ान को बुलाया गया था जब अमेरिका, और दो जो स्टालिन जो था रशिया का, USSR का, उसने भी इनविटेशन पहले भेजी थी और वाशिंगटन से भी इनविटेशन किया था, तो पाकिस्तान ने, क्योंकि इंडिया ने एक्सेप्ट किया था USSR को, पाकिस्तान ने फिर चला गया अमेरिका के पास, वो हिस्टोरिक गलती थी या जो भी था, पर पाकिस्तान ने ऑप्ट किया था अमेरिका के साथ अलाय बनना। तो वहाँ पे अमेरिकन ज्यूइश जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने लियाकत अली ख़ान को एक बहुत लेविश किस्म का डिनर दिया था, जिस तरह परवेज मुशर्रफ को 2006 में उन्होंने दिया था, और जिसके अंदर मुशर्रफ ने बाकी बड़ी स्पीच भी की थी और बहुत तारीफ़ें की थी इसराइल की, और ये इस तरह की बातें पहली दफ़ा ओपनली किसी लीडर ने कहा था कि पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशनशिप्स कायम होने चाहिए इन फेवर ऑफ इसराइल पाकिस्तान रिलेशनशिप। एल शरोन को इसने जो है ना बहुत वॉरियर और बहुत तारीफ़ें की थी उसकी। तो लियाकत अली ख़ान को यह सब दिया था कि अगर आप पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ कर लें, तो पाकिस्तान इस टाइम क्या था? भूखा था, सहक रहा था। क्यों? UK ने फंड्स दिए थे पाकिस्तान को और जो वेपन्स दी थी वो इंडिया ने रोक ली थी, इंडिया दे नहीं रहा था पाकिस्तान, वो डेस्परेट था पाकिस्तान फंड्स के लिए भी। इन्होंने ये लियाकत अली ख़ान को कहा था कि हम आपको इकनॉमिक एड भी देंगे, हम आपको मिलिट्री भी देंगे, ये बेनिफिट्स हो जाएंगे, और वो भी दस्ती, यानी ये नहीं कि फ्यूचर के वादे हैं कि आइंदा सालों में, अभी इमीडिएट करेंगे। सिर्फ एक डिमांड थी, सिर्फ एक डिमांड, आप इसराइल को रिकग्नाइज कर लें। लियाकत अली ख़ान ने क्या कहा था? हिस्टोरिक वर्ड्स थे लियाकत अली ख़ान के, जेंटलमैन आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, हमारी जो रूह हैं वो बिकाऊ माल नहीं है कि तुम इस तरह डालोगे तो हम अपने आप को बेच डालेंगे। तो हुआ क्या था, लियाकत अली ख़ान को सैसिनेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लियाकत अली ख़ान ही तो वो बंदा था जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी, जिसके अंदर जब पूरी दुनिया सेकुलरिज्म की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि सॉवरेनिटी जो है, हाकमियत जो है, वो गॉड ऑलमाइटी की है, अल्लाह की है, हमारा काम जो है वो सिर्फ खिलाफत है हमारी काम। असैसिनेट कर दिया गया, और पहले भी मैंने क्लास में बताया था कि हिस्ट्री के अंदर जब भी लीडर्स को असैसिनेट किया गया है, असैसिन जो होता है उसको फौरन मार दिया जाता है, हमेशा के लिए हिस्ट्री रह जाए, हमेशा के लिए मिस्ट्री रह जाए कि क्या हुआ क्या था। एक मुस्लिम हीरो रहे हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जिनके बारे में आप में से किसी को नहीं पता, वो थे ज्यू थे, ल्यूपोल्ड नाम था उनका, वो मुसलमान हुए थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान आए थे 30s के अंदर, अल्लामा इकबाल से मिले थे, और अल्लामा इकबाल ने उनको इंस्पायर करके कहा था कि इधर रुक जाओ क्योंकि अल्लाह ने यहाँ से अब खिदमत का काम लेना है, इस्लाम ने यहाँ से अब उठना है, इधर रुक जाओ। वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे सेटल हो गए थे, पाकिस्तान बना था, मुसलमान हुए थे ऑफ कोर्स, उनका नाम चेंज हो गया था, मोहम्मद असद हो गया था। لیاقت علی خان نے محمد اسد کو بھیجا تھا کہ تمام مسلم کنٹریز کا وزٹ پہ کہ اب ہم نے ایک یونائٹیڈ مسلم لیگ بنانی ہے, ایک سارے مسلمان کنٹریز کو جمع کرنا ہے. انہوں نے اپنی بایوگرافی کے اندر لکھا ہوا ہے دا روڈ ٹو مکہ, اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ اسیسینیشن ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ مسٹری رہی تھی ہے, تو اگلے دن میں نے لیاقت علی خان کی ٹیبل پہ جو چیز دیکھی تھی وہ ایک پیپر پڑا ہوا تھا, یونائٹیڈ مسلم لیگ پلان تھا, ایک لیاقت علی خان کا ڈرافٹ تھا کہ ہم کس طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اسیسینیٹ ہو گئے اور میرا جو مشن تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اکنامک سسٹم کے بارے میں کیا قائد اعظم نے کہا تھا جب انتہائی بیمار ہو چکے تھے اور خاص طور پہ اس کو اوپن کرنے کے لیے زیارت سے آئے تھے, وہ کراچی آئے تھے اسٹیٹ بینک کی اوپننگ سیرمنی. ظاہری بات ہے وہ اکنامکس نہیں تھے, ایک بہت لمبی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے پچھلے سال دکھائی تھی پوری, اس کا یہ پارٹ دکھا رہا ہوں جو ابھی سے ریلیونٹ ہے. دا اکنامک سسٹم آف دا ویسٹ ہیز کریٹڈ آلموسٹ انسالویبل پرابلمس فار ہیومینٹی اینڈ اونلی اے میریکل کین سیو اٹ. جو اکنامک سسٹم ہے یورپ کا, اس کی بات کر رہے ہیں ویسٹ کا, اس کے اندر تو ایسے مسائل ہیں کہ میریکل ہی ہوگا جو بچا سکے گا اسے. دا اڈاپشن آف ویسٹرن اکنامک تھیوری اینڈ پریکٹس ول ناٹ ہیلپ اس, ہم نے نہیں اس کو فالو کرنا. وی مسٹ ورک آور ڈیسٹنی ان آر اون وے, ہمیں کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے. لیکن بس دفن ہو گئے ان کے ساتھ, یہ ان کی باتیں بھی دفن ہو گئیں, اور ہماری ینگ جنریشن کو کوئی کنسرن نہیں ہے ان لوگوں سے. وہی پین گورین جس نے قائد اعظم کو ٹیلی گراف لکھا تھا, اس نے 1967 کی وار کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, دا ورلڈ زائنس موومنٹ شوڈ ناٹ بی نگلیکٹ فل آف دا ڈینجرز آف پاکستان ٹو اٹ اینڈ پاکستان ناؤ شوڈ بی اٹس فرسٹ ٹارگیٹ. کب؟ 1967. ابھی تھا کیا 1967 میں پاکستان کے پاس؟ کوئی نیوکلیئر ویپن تو نہیں تھا پاکستان, کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک اسپارک تھا 65 کے اندر, انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو بہت کم ریسورسز کے ساتھ بہت کچھ کرنے کے قابل ہیں. پاکستان کے اکنامک کوئی حالات نہیں رہے, پاکستان کا کبھی فیس ٹو فیس مقابلہ کسی جنگ میں پاکستان لڑا تو نہیں رہا اسرائیل کے ساتھ؟ نہیں پتا, افسوس کی بات ہے آپ لوگوں کو. 1973 کے اندر پاکستان ایئر فورس نے ہیلپ کی تھی سیرین سائٹ کے اوپر سیریا کے ساتھ, اور جو اسرائیلی جیٹس گرے تھے وہ پاکستان نے گرائے تھے. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 28 مئی 1998, تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا, ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی تھی اور پاکستان کے اندر ایک بہت پولیٹیکلی ٹی وی کے اوپر پروگرامز چل رہے تھے کہ کیا کیا جائے گا. وہ اس طرح کے نعرے بھی لگتے تھے, قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, اس طرح کے نعرے بھی لگا کرتے تھے, لیکن پاکستان کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے نہیں رہا تھا کہ ایگزیکٹلی ابھی کرنا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کرنا تم لوگوں نے, نہیں کرنا نہیں کرنا. بالآخر ہوا کیا تھا, ہوا یہ تھا کہ پاکستان نے انٹرنلی فیصلہ کر لیا, ہماری جو ایلیٹ تھی اس وقت کی, نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور آرمی اور ان سب لوگوں نے فیصلہ کر لیا انٹرنلی کہ ہم لوگوں نے نیوکلیئر ویپنز کرنے ہیں, ٹیسٹ کرنے ہیں. تو نواز شریف اپنے فادر کی بہت بات منع کرتے تھے, محمد شریف کی, میاں محمد شریف کی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمعے کا دن جو ہے 29 مئی کو تب کرنا, جمعے کا دن مبارک دن ہے. لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس نے پھر فوراً کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان ایک دن بھی اور برداشت نہیں کر سکتا, اگر ہم نے ایک دن بھی دیا نا تو ہمارے پاس کریڈیبل خبریں ہیں کہ اسرائیل کے وار پلینز, وار شپس جو ہیں, فائٹر جیٹس وغیرہ, یہ سب آ چکے ہیں انڈیا کے اندر اور سمندر کے اندر. پاکستان ایک دن اور ویسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اب ہمارے یعنی کہ اٹیک ہونے والا ہے پاکستان کے اوپر, فل فلیج اٹیک. تو پھر ایک دن پہلے لا کے, اسی دن جیسی خبر آئی تھی پہلے دن, ایک دن پہلے ہی پاکستان نے کر دیا تھا, ایٹمی دھماکے کر دیے تھے. دسمبر 2001 کے اندر انڈیا نے ایک ڈرامہ کیا تھا, ہمارے پارلیمنٹ پر اٹیک ہو گیا ہے اور پاکستان نے اٹیک کیا, ہم بدلہ لیں گے. جس طرح امریکہ کے پاس رائٹ ہے کہ 9/11 کا بدلہ لینے وہ افغانستان آ گیا ہے, ہماری پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا ہے ہم بدلہ لینے پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو 2002 کے اندر یہ پورا سال تھا یہ پاکستان اور انڈیا کی نا ایک جنگ کی ہائپ چلتی رہی تھی. تو اسی دوران ایک خبر تھی جو مشرف نے ٹی وی کے اوپر آ کے, قوم سے جو خطاب ہوتا ہے اس طرح ایک پریس کانفرنس کے اندر کھل کے بتایا تھا کہ ہماری ایئر فورس نے ایک اسپائی پلین گرایا ہے جو کہ انڈیا کا نہیں تھا, इसराइल का था वो, इंडियन स्पाई प्लेन नहीं था ये। अब वही लीडर जो पहले भी जाके इनकी तारीफें करता रहे, अपने तरफ से अपने आप को समझ रहा है कि मैं सेवियर ऑफ पाकिस्तान हूँ, उसी की अभी दोबारा इलेक्शन से पहले की उसकी जना उसके बयानात, ताकि वेस्ट जो है किस तरह से मुझे वापस थपकी दे कि मैं वापस आ सकूँ पावर के अंदर। उसने दोबारा इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं कि इसराइल जो है और पाकिस्तान हम करेंगे एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करेंगे। मुशर्रफ इनके जो प्लान्स हैं ग्रेटर इसराइल के थर्ड टेंपल बनाने के, वर्ल्ड के अंदर अपना किस तरह नेटवर्क को और फैलाना है, और इनके जो प्लान्स कि इसके अंदर जो रास्ते में जो सबसे बड़ी मुसीबतें हायल हैं पहले उनको किस तरह सफाया कर दो। इनका एक इंटरेस्ट है वो ये कि किसी तरह से पाकिस्तान की ये जो एटॉमिक जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास जो वेपन है जो आर्निसल है किस तरह से इससे पाकिस्तान को महरूम कर दिया जाए, क्योंकि 10 साल से एक रट लगाई हुई इन्होंने पाकिस्तान के एटमी हथियार महफूज नहीं है, पाकिस्तान के एटमी हथियार महफूज नहीं है, महफूज नहीं है, महफूज नहीं है, रट लगाई भी इन्होंने एक ही बात की, पाकिस्तान हमें डायरेक्ट कंट्रोल दे कि हम प्रोटेक्शन करेंगे उसके न्यूक्लियर एसेट की। एक दफ़ा पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्म जो है वो बाजू तोड़ दिया गया, उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करना, फिर इंडिया काफ़ी है। इंडिया कर क्यों नहीं पा रहा कुछ, ना 2002 में कुछ कर पा रहे हैं, ना इतने साल 12 साल होने को आ रहे हैं, इंडिया कुछ कर क्यों नहीं सक रहा। और मुसीबत यही है कि पाकिस्तान के पास, उसको पता है कि पाकिस्तान के पास हथियार है नहीं, वो तो मुझे अच्छी तरह याद है 2002 के अंदर खबरें ये होती थी जो फौजी रिलेटिव्स वगैरह होते वो कहते थे कि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 दिन का असला है इंडिया से लड़ने के लिए। जब जंग होती है तो फुल फ्लैज होता है ना, ये तो नहीं कि एक गोली मारी है एक बार में बस, उसके बाद दोबारा नहीं गोली मारनी, फिर आधे घंटे बाद दोबारा एक गोली मारना, तब तो अन्य बात गोलियाँ चलानी होती हैं, जो कुछ है फेंक रहे हैं ना आपने। अगर पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वेपन्स में सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 डेज का पाकिस्तान के पास है, उसके अलावा है ही नहीं हमारे पास, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ख़त्म हो जाएगा हमारे F-16 के जो अंदर जो रॉकेट्स होते हैं या हमारे पास जो टैंक के गोले, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? हमारे फौजियों ने कहाँ पैसा लगाया है? DHA में लगा रहे हैं पैसे, वो अपनी स्कीम्स में लगा रहे हैं। अभी कल की खबर है क्यानी साहब जाते हुए भी कह के जा रहे हैं कि सोल्जर्स के लिए हाउसिंग इंश्योरेंस का एक पैकेज अनाउंस करके जा रहे हैं। तो हमारी फ़ौज ने तो रिहाइशियाँ की हैं, अलबत्ता ये न्यूक्लियर चीज़ है ना, इससे किसी तरह से पाकिस्तान के ये अगर चला दिया ना पाकिस्तान, क्योंकि जारी बात है अगर मुल्क को बचाना है और आगे सारा हथियार ख़त्म हो गया, अगला काम क्या रह जाएगा? एटम ही रह जाएगा। तो इसलिए उसको वो जो एटॉमिक आर्म है पाकिस्तान का उसको तोड़ दे किसी तरह से इसराइल और अमेरिका, उसके बाद इंडिया जाने और जो मर्जी करे। इंडिया चाहता है तो पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह बना ले। ये भी नोट करें आप कि बांग्लादेश जो है जब से टूटा है बांग्लादेश के खिलाफ अब कोई दुश्मनी नहीं है, कोई प्लान्स ही नहीं है इंडिया के उसके खिलाफ। ये उसके साथ प्लान्स हैं जिसके मुल्क का नाम था पाकिस्तान का इस्लाम के साथ, और बर्बाद करके रख दिया नई नस्ल को, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, ना उनको अपनी तारीख का पता है। वही बाल का शेर मैं दोबारा आपको दोहरा के बताता हूँ, क्लास ख़त्म करता हूँ। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूँ था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। अगली क्लास के अंदर दज्जाल और आगे जो क़यामत से करीब जो वाक़यात होंगे उनके बारे में मैं बता दूंगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक।